अध्याय 9 प्राचीन भारत में शिक्षा उद्देश्य पाठ्यक्रम अनुशासन केंद्र गुरुकुल नालंदा तक्षशिला आदि भूमिका विश्व के जब अन्य देश असभ्य जीवन बिता रहे थे भारत में उच्च कोटि की संस्कृति फलीभूत हो रही थी। इसका मूल कारण यह था कि भारत में शिक्षा का प्रसार अति प्राचीन काल में हो गया था। यहाँ के मनुष्यों ने विशाल साहित्य का निर्माण किया और उसके पठन पाठन की उत्तम व्यवस्था की। भारत में शिक्षा का अर्थ किताबी ज्ञान से नहीं था बल्कि शिक्षा का सर्वांगीण विकास का साधन थी। शिक्षा के द्वारा मानव का बौद्धिक अत्याधिक विकास तो होता ही था, साथ ही वह जीवन के चरम लक्ष्य मोक्ष की ओर भी उन्मुख होता था। प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली की विशेषताएं। प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। नंबर 1, धार्मिक तत्वों की प्रधानता। प्राचीन भारत में शिक्षा में धार्मिक तत्वों की प्रधानता थी। शिष्यों का जीवन धर्ममय होता था क्योंकि शिक्षा की विभिन्न क्रियाओं में धर्म के क्रियात्मक स्वरूप पर बल दिया जाता था। उस समय शिक्षा धार्मिक तत्वों जैसे प्रार्थना, संध्या, यज्ञ, वेद ग्रंथ, पूजा आदि से परिपूर्ण होती थी। बालक गुरुकुल में रहकर इन सभी तथ्यों को व्यवहार में लाते थे। अन्य विषयों की शिक्षा में भी उस समय धार्मिक पुट वर्तमान होते थे। टीएम सिकवरा ने लिखा है कि शिक्षा का तात्पर्य एक धार्मिक संस्था होने से था। शिक्षक को यह पढ़ाना पड़ता था कि यह कैसे प्रार्थना एवं यज्ञ करे और किस प्रकार अपने जीवन की अवस्था के अनुकूल अपने कर्तव्यों को पूरा करे। भारतीय शिक्षा आवश्यक रूप से धार्मिक तथा वैयक्तिक थी। शिक्षा का मूल उद्देश्य धार्मिक भावनाओं से अनुप्राणित होता था, इसीलिए छात्रों की धार्मिक प्रवृत्तियों को जागृत करने का प्रयास किया जाता था। गुरु लोग धार्मिक भावनाओं का विकास करने के लिए निम्नलिखित उपाय करते थे। नंबर 1, विद्यालय के सभी विद्यार्थी मनसा वाचा कर्मणा ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते थे। नंबर 2, धार्मिक अनुष्ठानों को विधिवत संपादित किया जाता था। नंबर 3, विद्यार्थी सायकाल और प्रातःकाल विधिवत प्रार्थना करते थे। नंबर 4, गुरुकुलों में उपवास की प्रथा थी। नंबर 5, छात्रों का जीवन पवित्रता से ओतप्रोत होता था। नंबर 6, गुरुकुल के सभी छात्र पवित्र आचरण करते थे। नंबर 2, चरित्र निर्माण पर बल। प्राचीन भारत में शिक्षा में चरित्र निर्माण पर विशेष बल दिया जाता था। उस समय के शिक्षा शास्त्रियों का मत था कि मानव जीवन तभी सफल हो सकता है जबकि जीवन में चरित्र का चमत्कार हो। विद्वान व्यक्ति का निर्माण करने से अच्छा है एक अच्छे चरित्रवान का निर्माण करना। मॉन्टेस्क्यू का कहना है, एक विद्वान व्यक्ति है जिसकी तरफ सभी लोग दौड़ कर जाते हैं, पर जब हम यह कहते हैं कि वहाँ एक चरित्रवान व्यक्ति है तो कोई नहीं जाता है। इस तरह आधुनिक शिक्षा शास्त्री चरित्रवान व्यक्तियों की अपेक्षा विद्वान व्यक्तियों का निर्माण करना अच्छा समझते हैं, लेकिन प्राचीन भारत में विद्वानों की अपेक्षा चरित्रवान व्यक्तियों का निर्माण करना शिक्षा का उद्देश्य था। चरित्रवान व्यक्तियों का निर्माण करने के लिए निम्न कार्य किए जाते थे। नंबर 1, छात्रों को अच्छे और पवित्र वातावरण में रखा जाता था। नंबर 2, चरित्र के महत्व पर समय समय पर उपदेश दिए जाते। नंबर 3, विद्या आरम्भ करते समय धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन आवश्यक था। नंबर 4, चरित्र विकास के लिए यज्ञ आदि क्रियाएं कराई जाती थी। नंबर 5, गुरु लोग छात्रों के आध्यात्मिक और बौद्धिक विकास पर विशेष बल देते थे। नंबर 3, व्यक्ति तत्व का संपूर्ण विकास। प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था में व्यक्तित्व के विकास पर विशेष बल दिया जाता था। प्राचीन भारतीय शिक्षा की प्रत्येक क्रिया आदर्श चरित्र और व्यक्तित्व निर्माण को देने वाली थी। छात्र ब्रह्मा मुहूर्त में ही जागते थे, रोज समय पर पूजा करते थे, सत्य बोलते थे, आत्म संयम का जीवन व्यतीत करते थे। सारांश यह है कि उस समय की शिक्षा का उद्देश्य यही था, मनुष्य को मनुष्य बनाना। मनुष्य मनुष्य बनता है तब जबकि उसमें मनुष्य के सभी गुण विकसित हो जाते हैं। जिस व्यक्ति में मनुष्य के सभी गुणों का विकास हो जाएगा स्वभावतः उसका व्यक्तित्व आदर्श व्यक्तित्व कहा जाएगा। ऐसे व्यक्ति में आदर्श चरित्र अवश्य मिलेगा। वैदिक काल की शिक्षा इसी जिसमें विकास पर ध्यान देती थी। नंबर चार, ब्रह्मचर्य जीवन पर विशेष बल। गुरुकुलों में शिक्षा प्राप्त करने वाले प्रत्येक विद्यार्थी के लिए आवश्यक था कि वह सादा जीवन और उच्च विचार के आदर्श को मानकर चले। उसमें आत्मसंयम इंद्रिय निग्रह होता था। वह स्त्री के बारे में सोचता भी नहीं था। स्पर्श करना और देखना तो दूर की बातें थी। इसका एक कारण और भी था कि छात्रों का वातावरण, खान पान आदि इतने सादे होते थे कि विचारों में इतनी पवित्रता होती थी कि बुरी बातें मस्तिष्क में नहीं आती थी। विद्यार्थी 25 वर्ष तक की अवस्था तक सामान्यतः ब्रह्मचारी रहकर गुरुगृह में रहता था। शिक्षा का समाप्त करने के उपरांत ही अपने घर में आकर वह विवाह करता था और यही से उसका गृहस्थ जीवन शुरू होता था। नंबर पाँच, शिक्षा की गुरुकुल प्रणाली। रविन्द्रनाथ टैगोर के इस कथन द्वारा हमारी प्राचीन शिक्षा प्रणाली की विशेषताओं पर प्रकाश पड़ता है। उन्होंने लिखा है कि भारतीय संस्कृति का निर्माण नगरों में नहीं बल्कि वन प्रांतीय आश्रमों में ही हुआ था। प्राचीन भारत में उपनयन संस्कार के उपरांत ही प्राय 8 वर्ष की अवस्था में बालक गुरु को गृह में भेज दिया जाता था। वहां पहुंचकर वह अंतेवासिन अथवा गुरुकुलवासी कहलाता था। अतः वह विद्यार्थी कहा जाता था। वह अपने गुरुदेव के श्री चरणों में बैठकर शिक्षा प्राप्त करता था। यह गुरुकुल जन कोलाहल से दूर प्रकृति के पुनित प्रांगण में होते थे, लेकिन गुरुकुल नगरी गांव से बहुत दूर नहीं होते थे। इसका कारण यह था कि अधिक दूर रहने पर खाद्य सामग्रियों का अभाव हो जाने पर मिलना कठिन हो जाता था। यह निश्चित गुरुओं का ही अनुकरण करते थे। वहां उनको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना होता था। गुरुकुलों पर राज्य का शासन का नियंत्रण नहीं होता था। शिक्षा का सम्राट स्वयं गुरु था। वह जो चाहता था वही शिक्षा दे सकता था। वे गुरु विद्यार्थियों के मानस पिता होते थे। वे छात्रों को केवल शिक्षा नहीं देते थे बल्कि उनके पालन पोषण, वेशभूषा आदि का भी ध्यान रखते थे। ये गुरुकुल विद्यालय का भी कार्य करते थे तथा गुरु के घर का भी कार्य करते थे। इन गुरुकुलों में साधारणतः दोनों ही विशेषताएं पाई जाती थी। आज के विद्यालय में इस बात का अभाव है। नंबर छह, गुरु शिष्य का पिता पुत्र का संबंध। वैदिक कालीन शिक्षा की एक सबसे बड़ी विशेषता यह भी थी कि गुरु और शिष्य का संबंध पिता और पुत्र की तरह था। गुरु अपने शिष्य का मानस पिता और शिष्य अपने गृह मानस पुत्र होता था। गुरु की प्रत्येक आज्ञा का पालन शिष्य बड़े ही अनुराग, प्रेम तथा आदर से करता था। आजकल गुरु और शिष्य संबंधों में बहुत बड़ी कमी आ गई है। आज यह संबंध विद्यारूपी सौदे के क्रेता और विक्रेता के रूप में रह गया है। आज का शिष्य तो जब तक गुरु से शिक्षा प्राप्त करता है तब तक भी उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं करता। वैदिक काल के शिष्य जब तक गुरुकुल में रहते थे तब तक ही गुरु की आज्ञा पालन नहीं बल्कि जीवन पर्यंत करते थे और उसके एक एक शब्द की लकीर पर चलते थे। नंबर सात, व्यवहारिक एवं पूर्ण शिक्षा पर बल। वैदिक कालीन शिक्षा केवल पुस्तकालय ही नहीं थी। अर्थात इस शिक्षा द्वारा बालक का केवल आध्यात्मिक विकास ही नहीं किया जाता था बल्कि आध्यात्मिक जीवन के साथ साथ उसके वर्तमान जीवन पर भी ध्यान दिया जाता था। बालकों के जीवन में काम आने वाली शिक्षा प्रदान की जाती थी, इसलिए उन्हें व्यवसायिक शिक्षा दी जाती थी। सैद्धांतिक शिक्षा के साथ ही साथ क्रियात्मक शिक्षा पर भी बल दिया जाता था। डॉक्टर अल्टेकर ने लिखा है, वैदिक कालीन शिक्षा का उद्देश्य अनेक विषयों का साधारण ज्ञान प्रदान करना नहीं था बल्कि उसका आदर्श विभिन्न क्षेत्रों में दक्ष बना देना था। नंबर आठ, उचित समय में शिक्षा का शुभारंभ। प्राचीन काल में शिक्षा का शुभारंभ बाल्यकाल से ही कर दिया जाता था। आज भी ऐसा ही किया जाता है क्योंकि बाल्यावस्था ही शिक्षा की एक उत्तम अवस्था होती है। बालक मनन चिंतन भी कर सकता है, इसलिए वैदिक काल में 5 से 8 वर्ष की अवस्था में ही उपनयन संस्कार करके शिक्षा आरंभ कर दी जाती थी। डॉक्टर अल्टेकर ने इस संबंध में लिखा है कि प्राचीन भारतीय समझते थे कि यदि शिक्षा आरंभ करने में विलंब किया जाता है तो उसके अच्छे परिणाम नहीं निकल सकते थे। नंबर 9, दैनिक दिनचर्या का महत्व। प्राचीन कालीन शिक्षा में दिनचर्या का महत्व अत्यंत महत्वपूर्ण था। विद्यार्थी सूर्योदय के पूर्व ही जग जाते थे, यहाँ से उनके क्रियाकलाप आरंभ हो जाते हैं और रात्रि तक के क्रियाकलाप कठोर नियमों की श्रृंखला में बंधे हुए चलते थे। उन सभी नियमों का पालन करना प्रत्येक विद्यार्थी के लिए आवश्यक था। इन सभी क्रियाकलापों को वो नियमित ढंग से करते थे, वे बालक के जीवन के अंग बन जाते थे। इससे लाभ यह होता था कि आने वाले पूरे जीवन में विद्यार्थी उन नियमों का पालन करता था। गुरुदेव की सेवा करते हुए वैदिक जीवन में परिश्रम करते हुए सेवा और श्रम के महत्व को समझ लेता था। नंबर 10, विद्यार्थी जीवन के बाद 20वां अध्याय। प्राचीन काल में विद्यार्थी जब अध्ययन काल समाप्त कर देता था तो समापन संस्कार के समय आचार्य विद्यार्थियों को यह उपदेश आदेश देते थे कि उन्होंने अध्ययन काल में जिन ग्रंथों का पठन किया है उनका पठन आगे भी करते रहेंगे, ज्ञान का भी स्मरण किसी प्रकार ना करेंगे। स्वयं अध्याय के लिए वर्षा काल सबसे अच्छा समय माना गया है, क्योंकि इस समय कृषक कृषि कार्य से भी मुक्ति पा गए रहते हैं। नंबर 11, पालन पोषण एवं आदर्श वातावरण पर बल। आज की तरह प्राचीन काल में शिक्षक गुरु यह समझते थे कि बालक की शिक्षा में उसके स्वभाव, वंशानुक्रम, पालन पोषण, वातावरण का विशेष महत्व होता है। आजकल भारत में यह मनोवैज्ञानिक सिद्धांत केवल सैद्धांतिक ही है, लेकिन प्राचीन काल में गुरु लोग इन सिद्धांतों का विधिवत पालन करते थे। अथर्ववेद में इस बात का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि उचित अनुकूल परिस्थितियों में हर बात उपलब्ध हो जाती है। इसी आधार पर वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित ना होकर कर्म पर आधारित थी। नंबर 12, सामाजिकता की भावना के विकास पर बल। प्राचीन कालीन शिक्षा में बालकों के सामाजिक विकास पर अत्यधिक बल दिया जाता था। इसके लिए उसमें सामाजिक भावना पैदा की जाती थी। बालक गुरुकुल में रहकर सामूहिक रूप से शिक्षा प्राप्त करता था तथा वह सामाजिक क्रियाएं भी सामूहिक रूप से करता था। जिस सामूहिकता के कारण उसमें सामाजिकता की भावना का विकास होता था। नंबर 13, आत्मनिग्रह पर बल। व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के साथ ही साथ आत्मनिग्रह भी अति आवश्यक है, इसलिए प्राचीन कालीन भारतीय शिक्षा में इंद्रिय निग्रह पर विशेष बल दिया जाता था। गुरुकुल में रहते हुए विद्यार्थी अत्यंत सादगी का जीवन व्यतीत करते थे। उनकी भूमि पर सोना, साधारण वस्त्र पहनना, ऐसे आनंददायक वातावरण से दूर रहना जो इंद्रिय निग्रह में बाधा डालने वाला हो, तथा इन बातों को अभ्यास विद्यार्थी विधिवत किया करते थे। बड़े बड़े घरों से आए हुए छात्रों में भी उसी भावना का विकास किया जाता था। नंबर 14, स्व अध्याय का महत्व। प्राचीन भारत में शिक्षा संपादन के लिए गुरु के उपदेशों का श्रवण ही पर्याप्त नहीं था और अनुभवात्मक प्रत्यक्षीकरण पर ही शिष्य की शिक्षा निर्भर होती थी। स्व अध्याय एक प्रकार का ब्रह्मा यज्ञ था, अतएव सबको स्व अध्याय रूपी यज्ञ करना पड़ता था। शतपथ ब्राह्मण में स्व अध्याय को ब्रह्मा यज्ञ कहा गया है। 15, सार्वजनिक और निःशुल्क शिक्षा। प्राचीन काल में ऋषि ऋण से मुक्त होने के लिए तथा समाज का विकास करने के लिए हर कोई, चाहे पुरुष हो अथवा स्त्री, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, सबको शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। हर किसी के समान रूप से शिक्षा प्राप्त करने के लिए पूर्ण अवसर था, क्योंकि उस समय की शिक्षा निःशुल्क थी। इस शिक्षा को धनी गरीब सभी लोग प्राप्त कर सकते थे। छात्रों को भोजन आदि की समस्या भिक्षा द्वारा पूरी हो जाती थी। शिष्य जब शिक्षा समाप्त कर लेते थे तो अपनी शक्ति के अनुसार गुरुदेव को दक्षिणा देते थे। मनु का कहना है कि विद्यार्थी गुरु दक्षिणा के रूप में गाय, अन्य अश्व आदि दे सकता था। पीएन प्रभु ने लिखा है कि हिंदू बालक की शिक्षा आर्थिक स्थिति पर कभी निर्भर नहीं रहती थी। विद्या मंदिर के द्वार राजकुमार तथा दरिद्र सभी के लिए खुले रहते थे। नंबर 16, बाहरी नियंत्रण से मुक्ति। प्राचीन काल की शिक्षा बाह्य नियंत्रण से मुक्त थी। प्राचीन काल में शिक्षा राज्य या सरकार या अन्य किसी राजनीतिक दल आदि के बाह्य नियंत्रण से मुक्त थी। राजा का कर्तव्य था कि वह इस बात को देखे कि विद्वान पंडित बिना किसी विघ्न बाधा के अध्ययन कार्य में रत रहे। इसी प्रकार भारत में शिक्षा पर कोई जाति प्रभाव, रुचि या पक्षपात का प्रभाव नहीं था। नंबर 17, विनय और आत्मानुशासन पर बल। प्राचीन काल की शिक्षा में बालक के अंदर आत्मानुशासन पैदा करने पर विशेष बल दिया जाता था। केयल वकील ने आत्मानुशासन के महत्व पर बल देते हुए लिखा है कि सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ डिसिप्लिन वाज कंसीडर्ड टू बी द बेस्ट डिसिप्लिन। सेल्फ इंडल्गेंस और फ्रीडम वाज परमिटेड इन चाइल्डहुड। सेल्फ डिसिप्लिन वाज एक्सपेक्टेड इन एडोलसेंस एंड फ्रीडम वाज अलाउड इन एडल्ट एज। केएल वकील डिस्कस। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्राचीन भारतीय शिक्षा में मानव जीवन के सर्वतोमुखी विकास का प्रयास किया गया था। शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्ति का साधन मात्र न थी, वह स्वयं जीवन की तैयारी थी और उसके माध्यम से व्यक्ति अपने चरम लक्ष्य की ओर अग्रसर होता था। वैदिक संस्कृति के शिक्षा के आदर्श और स्वरूप। शिक्षा का महत्व चिरकाल से अक्षुण्य रहा, क्योंकि शिक्षा का लक्ष्य मानव जीवन के प्रत्येक पहलू को विकसित करना है। शिक्षा न केवल भौतिक विकास करती है, वरन यह आध्यात्मिक विकास भी संपन्न करती है। हमारे पूर्वज इससे भली भांति अवगत थे, अतः वे यह कामना करते थे। धियो यो ना प्रचोदयात, अर्थात ईश्वर बुद्धि को सन्मार्ग की ओर लगाओ। इतना ही नहीं, अग्ने न सुपथाराय अस्मान विश्वानी देवयायुनानी विद्वान युवोध्यस्म अस्म जज्जुरुणाल मेनी भूय अष्टान्ति नमः उक्ति विधेम। अर्थात हे अग्निदेव, हम सन्मार्ग से होकर विश्व की ओर बढ़े। आप हमें उधर ले ही नहीं चले, अपितु आप हमारे हृदयों से दुर्गुण एवं पाप भावनाओं को निकाल दे, जिससे कि हमारी बुद्धि निष्पाप तथा शुद्ध हो सके। सभी कार्य बुद्धि द्वारा संपादित होते हैं। यदि बुद्धि निष्पाप है तो कार्य निष्कलुष होंगे। इसलिए प्राचीन ऋषि बुद्धि को मेधावी बनाने के लिए देवताओं से प्रार्थना करते हैं। याम मेधाम देवगणा पितरश्चोपासते तया मामथ मेधयाग्ने मेधादिनं कुरु पुनन्तु मा देवजना पुनन्तु मानसाधीय पुनन्तु विश्वाभूतानि जातवेति पुनिह मा। इन विभिन्न स्तुतियों से हम स्पष्टतया देख सकते हैं कि वैदिक काल में शिक्षा बुद्धि को परस्कृत करके सुपथ की ओर अग्रसर करती थी। वस्तुतः शिक्षा का ध्येय यह था जिसे प्राचीन ऋषिगण भली भांति समझते थे। आज इसी ध्येय को पुनः स्थापित करके शिक्षा को ग्रहण करने की आवश्यकता है। तेजोस्वी तेजोमयी ध्येयी वीर्यमसी वीर्यमयी ध्येयी बलमसी बलमयी ध्येयी सहोमसी सहोमयी ध्येयी। आयु प्राण धन तेज को प्राप्त करने की कामना यथार्थ उसके लिए स्तुति करने की इच्छा प्राचीन काल से ही रही। आज भी ये मंत्र मानव मन की आदिम कामना को व्यक्त करते हैं। ये मंत्र ये शिक्षाएं सहनशीलता प्रदान करके मानव जीवन को कल्याणपूर्ण बनाने में पूर्णतः सक्षम है। इतना ही नहीं, वैदिक संस्कृति का एक आदर्श यह भी था सत्यम शिवम सुंदरम के साथ ही युक्त विश्व कल्याण की कामना। यही एवं पारलौकिक उन्नति के लिए ब्रह्मा के स्वरूप का ज्ञान आवश्यक हो उठता था। इसी ब्रह्मा की प्राप्ति के लिए शिक्षा दी जाती थी। ब्रह्मा तल्लक्ष्य मुच्यते तपसा चीयते ब्रह्मा। इस ब्रह्मा की प्राप्ति के लिए यम नियमों का पालन करने का निर्देश शिक्षा में मिलता है। मानव मात्र को इसका पालन करना आवश्यक था। यम तत्रा हिंसा सत्या अस्ते ब्रह्मचर्य परिग्रह यम तथा नियम शौच संतोष तप स्व अध्याय ईश्वर प्राणी धानाति नियम। अर्थात अहिंसा सत्य अस्थे ब्रह्मचर्य परिग्रह तथा मन वचन कर्म पवित्रता शौच संतोष तप स्वाह अध्याय और ईश्वर प्राणिधान ये यम नियम मानव जीवन को पूर्णता प्रदान करने के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करना तत्कालीन शिक्षा का आदर्श था। वैदिक साहित्य में ब्रह्मचर्ये तपसा देवा मृत्यु मुपाग धनतः मरणम बिंदु पातेन जीवनम बिंदु धारणात् चरित्र को उच्च बनाए रखना भी उस समय का आदर्श था। अछीड़े बीतते छीड़ो बीतस्तु हतो हतः। इसके अतिरिक्त शिक्षा का मूल आदर्श श्रद्धा की भावना थी। छात्रों की अपने गुरुओं के प्रति असीम श्रद्धा थी। मानव जीवन की सफलता का एकमात्र आधार दूसरों में श्रद्धा रही रखना ही है। विशेषकर गुरुओं में श्रद्धा से सभी कार्य संपन्न हो जाते हैं। श्रद्धा याग्नि समीध्यते श्रद्धा यूते हवि श्रद्धा भगत मूर्धनि वाचसा वेद यामसी। श्रद्धा की भावना जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी थी और है। ज्ञानार्जन करने के लिए श्रद्धा व्यस्त होना परम आवश्यक है। श्रद्धा का महत्व वेद में इस प्रकार वर्णित किया गया है। व्रतेन दीक्षा मापनोति दीक्षाया पनोति दक्षिणाम दक्षिणा श्रद्धा मापनोति श्रद्धा सत्यम माप्यते। अर्थात व्रत से दीक्षा 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 से दक्षिणा दक्षिणा से श्रद्धा और श्रद्धा से सत्य इस प्रकार मानव को सुपथ पर ले जाने का आदर्श वैदिक शिक्षा का ही है। वैदिक कालीन शिक्षा आचरण को शुद्ध बनाकर मेधावी ब्रह्मचारी को ज्ञान लाभ कराती थी। मनु ने कहा है कि उत्पादक ब्रह्मा दात्रोर यति ब्रह्माद पिता ब्रह्मा जन्म ही विप्रस्यः वृत्तचेह शाश्वतम्। अर्थात उत्पादक पिता की अपेक्षा आचार्य अधिक महत्व का भागी होता है, क्योंकि उत्पादक पिता ने तो केवल एक जन्म प्रदान किया है, किंतु भव सागर से पार लगाने के लिए आचार्य ही मानव का पूर्ण व पवित्र निर्माण करता है। वैदिक शिक्षा पंच क्लेशों को दूर करने तथा ज्ञान का प्रकाश करने में समर्थ है। इसलिए कहा गया है कि रिते ज्ञानांत मुक्ति यह ज्ञान शिक्षा द्वारा ही संभव था। इस प्रकार हम देखते हैं कि वैदिक शिक्षा के आदर्श आज भी मानव जीवन को उच्च पद की ओर ले जा सकने में समर्थ है। केवल उस समय की आध्यात्मिक व भौतिक उन्नति ही नहीं, आज भी जीवन के प्रत्येक पहलू की उन्नति एवं इन आदर्शों द्वारा संभव होती है। वैदिक शिक्षा का स्वरूप। प्राचीन भारत में धर्म के आधार पर ही सब कुछ टिका हुआ था। धर्म परमार्थ का ही प्रतिपादन करता है। इस आधार पर भारतीय रीति नीति परमार्थ मूलक ही थी। व्यष्टि की समष्टि के लिए बलिदान कर दिया जाता था। वैदिक समाज की भावनाएं अत्यंत उद्यात थी। नैतिक सिद्धांतों का प्रतिपालन किया जाता था। भारत की प्राचीन शिक्षा इसी समष्टि के आदर्श को लेकर प्रारंभ हुई थी। जीवन सो उद्देश्य होता था, उसकी प्राप्ति हेतु मानव जीवन का प्रत्येक प्रयास होता था। इसी कारण शिक्षा व ज्ञान का महत्व था। इसी के द्वारा मनुष्य धर्म पथ पर अग्रसर होता हुआ ब्रह्मामय हो जाता था। वेदों में अध्यात्म तत्व का सुंदर निरूपण हुआ है। इसी के ज्ञानार्थ जिज्ञासु शिष्य वनों में गुरु चरणों में बैठकर विद्या लाभ किया करते थे। नंबर एक, शिष्य वन प्रांत में गुरु सेवा में रत रहते हुए ज्ञानार्जन करते थे। वे गुरु के आदर्श गुणों का अनुकरण व अनुसरण करते थे। उस समय गुरु आदर्श नीति रीतियों की प्रतिमूर्ति माना जाता था। शिष्य के व्यक्तित्व का विकास तभी संभव था जब वह गुरु के व्यक्तित्व को अपनाने का प्रयास करे। इस प्रकार गुरु का आदर्श जीवन अपनाकर शिष्य शिक्षा के उद्देश्य को पूर्ण करने में संलग्न रहते थे। गुरुकुल वास करते हुए ही शिष्य को समाज से संबंध रखना पड़ता था, क्योंकि गुरु के लिए संविधा भोजन आदि सामग्री वही से भिक्षा द्वारा एकत्र करनी होती थी। इस प्रकार समाज में विभिन्न प्रकृति वाले व्यक्तियों से संपर्क तो होता ही था, साथ ही श्रम की शिक्षा भी प्राप्त होती हो जाती थी। अपने कार्य के अतिरिक्त उसे विनय भाव से गुरुजनों की सेवा करनी होती थी और गुरु आज्ञा का पालन भी करना होता था। अत्यधिक प्रसाधन सामग्री का उसके लिए प्रयोग करना निषेध था। रूप रस गंध आदि से दूर रहकर जीवन यापन करता था। इस प्रकार शिष्य को व्यवहारिक शिक्षा तो प्राप्त होती ही थी, वन प्रांत में रहने के कारण प्राकृतिक ज्ञान भी प्राप्त हो जाता था। नंबर 2, पशुपालन एवं कृषि ज्ञान। गुरु गृह के पालित पशु आदि का भी उसे पालन करना होता था, कृषि ज्ञान का भी लाभ भी होता था। वैदिक शिक्षा मनुष्य को सादा जीवन व्यतीत करते हुए उच्च विचारों की भाव भूमि पर ले जाती थी। छंदोग्य उपनिषद में एक स्थल पर आया है कि सत्यकाम नामक शिष्य गुरु सेवा करता था। वह गायों की सेवा करता था। उसने अपने सेवा से 400 गायों की संख्या 1000 कर दी थी। नंबर 3, व्यवहारिक ज्ञान। वैदिक शिक्षा से ना कोरा पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त होता था, अपितु वह जीवन का व्यवहारिक ज्ञान भी प्रदान करती थी। जीवन के संघर्षों से जूझने के लिए आत्मिक शक्ति भी प्रदान करती थी। शिष्य के लिए भिक्षाटन प्रथा थी, जो कि शिष्यों को परमुखापेक्षी न बनाकर दान त्याग आदि गुणों का विकास भी करती थी। नंबर 4, मित्र भाव एवं समभाव से रहने की आदत। गुरुकुलवास की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता यह भी थी कि शिष्य परस्पर समभाव से रहते थे। वहाँ न धन के ऐश्वर्य का अहंकार होता था, न दरिद्रता की मलिन छाया। सभी मित्र भाव से रहते थे। यही प्रारंभिक समता की शिक्षा मानव जीवन में आगे जाकर मानव मात्र के प्रति समानता की भावना को पैदा करती थी। शिक्षा प्रारंभ में ही अपने व्यक्तित्व अस्तित्व को पहचानने की क्षमता प्रदान करती थी। नंबर 5, समाज की महत्वपूर्ण घटक। वैदिक शिक्षा के द्वारा ही बाल्यावस्था में ही यह अनुभव कराया जाता था कि वह महत्वपूर्ण घटक है, तथा तीनों ऋणों का ज्ञान कराकर उस ऋण से मुक्त होने के लिए उसे शारीरिक व आध्यात्मिक शक्ति गुरु ही प्रदान करता था। यह वैदिक शिक्षा स्वालंबन का पाठ भी पढ़ाती थी। भारतीय ऋषियों ने ही तत्व ज्ञान मीमांसा करके भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व को जो ज्ञान प्रदान किया है वह अमूल्य है। वैदिक शिक्षा का लक्ष्य एकमात्र लौकिक परलौकिक विभक्तियों का समन्वय और मानवीय जीवन की पूर्णता ही थी। नंबर 6, ऋग्वेद का अध्ययन आवश्यक। तत्कालीन शिक्षा का स्वरूप भली भांति जानने के लिए ऋग्वेद का सम्यक अध्ययन अत्यंत आवश्यक है। ऋग्वेद में निहित ज्ञान मनुष्यों को वर्षों की तपह साधना का प्रतिफल है। ऋग्वेद में जो शांति का संदेश है वह भौतिक वातावरण में प्राप्त नहीं हो सकता। ऋग्वेद कालीन शिक्षा धर्म के क्रियात्मक रूप की ओर उन्मुख करती है। ऋग्वेद काल में पूजा व यज्ञ का प्राधान्य था, तत्कालीन शिक्षा धर्म का प्रचुर प्राचार करती है। नंबर 7, विविध विषयों का ज्ञान। वैदिक कालीन शिक्षा न केवल वेदक बनाती थी, अपित धर्म दर्शन व यज्ञ के विधि विधानों का भी ज्ञान कराती थी। उस समय शिष्यों को चिकित्सा शास्त्र का भी ज्ञान दिया जाता था। ज्योतिष विद्या, संस्कार तंत्र आदि का भी विवेचन इन वेदों में मिलता है। लौकिक सामग्री को भी उपन्यस्त किया है इन वेदों में। नंबर 8, मौखिक शिक्षा। वैदिक काल में शिक्षण विधि मौखिक थी, क्योंकि मुद्रण के अभाव में पुस्तकें व विद्यालय संभव न थे, केवल तप ही प्रधान था। गुरु शिष्यों को मौखिक शिक्षा प्रदान करता था। इसी कारण सभी मंत्र छंदात्मक अधिक है, क्योंकि पद याद रखने में सुविधा अधिक होती थी। गुरु शिष्य को वह शिक्षा प्रशिष्ट को इस भांति शिष्य प्रशिष्यों की एक परंपरा का उदय होता है। सभी शिष्यों की ऋचाएं कंठाग्र होती थी। उस समय शिष्यों का मानसिक स्तर पर वर्गीकरण किया जाता था। सायण में महाप्रज्ञ, मध्यम प्रज्ञ तथा अल्प प्रज्ञ तीन प्रकार के विद्यार्थियों का विवेचन किया है। मंत्रों का उच्चारण शुद्ध होता था, जिससे कि गुरु मौखिक रूप से ही शिष्य को सिखाता था। नंबर 9, साधना एवं तप का महत्व। ऋग्वेद काल तक वर्ण व्यवस्था के संकेत अस्पष्ट थे, ज्ञान फिर भी सीमा में नहीं आ पाया था। कठिन साधना व तप द्वारा प्रत्येक प्राणी इसका अधिकारी हो सकता था। अनेक क्षत्रियों का उल्लेख मिलता है, जिन्होंने की अपने अध्यावसाय से ऋषि पद ग्रहण किया था। ये नाम उल्लेखनीय है। अम्बरीश, त्रस्त शिव सिंधु दीप मंदहाता तथा शिव आदि स्त्रियां भी ज्ञान के क्षेत्र में पीछे नहीं थी। रोमसा लोपा मुद्रा घोषा अपाला कद्रु श्रद्धा उर्वशी देवयानी आदि अनेक विद्वान ऋषिकाएं उल्लेखित हैं। यहाँ तक कि अनारस द्रव्य शिक्षा ग्रहण कर सकते थे। नंबर 10 सर्वांगीण विकास। वैदिक काल में शिक्षा महत उद्देश्य लिए थे। इसका लक्ष्य तक व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना ही था। गुरु व शिष्य का अत्यंत निकट संबंध होता था, जिसके कारण गुरु शिष्य का मानसिक स्तर पर भी निकट का संबंध होता था। ऋषि ऋण देव ऋण प्रति ऋण ये ऋण त्रय मानव गृह ब्रह्मचर्य आश्रम में पूरा करता था। इस बात की हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि वैदिक शिक्षा व्यक्ति का शारीरिक व आध्यात्मिक विकास ही नहीं करती थी, अपितु चारित्रिक विकास करने में भी पूर्ण सहयोग प्रदान करती थी। 11 उत्तर वैदिक काल। शिक्षा का स्वरूप कुछ परिवर्तित हो गया, क्योंकि सभी कुछ विकसित हो गया, लेकिन पूर्व वैदिक काल में शिक्षा के जो आधार थे वे ही कुछ विकसित हो गए। उत्तर वैदिक कालीन शिक्षा का मुख्य लक्ष्य ब्रह्मामय हो जाता था। इसके लिए यज्ञ आदि गौड़ हो गया तथा धर्म ग्रंथों ने प्रधानता ग्रहण कर ली। इस प्रकार स्व अध्याय रूप में शिक्षा का प्रसार व प्रचार हुआ। नंबर 12 पूर्व वैदिक काल की ही भांति शिष्य गुरुकुल में रहते हुए भिक्षाटन आदि करता था। वह गुरु की प्रत्येक संभव सेवा शारीरिक व मानसिक दोनों तरह से करता था। गुरु संपन्न शिष्यों से गुरु दक्षिणा भी लेते थे। व्याकरण का ज्ञान पहले ही भांति आवश्यक था। उच्चारण की शुद्धता तब भी वर्तमान थी। दीक्षा समाप्त होने पर गुरु की आज्ञा से शिष्य गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था। आजकल होने वाला दीक्षांत भाषण संबोधन उसी का परिवर्तित रूप है, किंतु कुछ भिन्नताएं भी मिलती है। प्राचीन काल में शिष्य विनीत होकर गुरु आदेशों का पालन करता है और बिना किसी वाद विवाद के शिक्षा ग्रहण करता था, किंतु समय के परिवर्तन के साथ साथ ये संबंध भी कुछ बदले। गुरु शिष्य में परस्पर वाद विवाद का उल्लेख हमें अनेक स्थानों पर मिल सकता है। पूर्व वैदिक काल की शिक्षा में मनोविज्ञान को उतना स्थान नहीं मिला था जितना कि वह उत्तर वैदिक काल में महत्वपूर्ण हो गया। निष्कर्ष उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्राचीन शिक्षा मानव का सभी पहलुओं से विकास करती थी। उसके आदर्श स्वयं में गरिमा व महानता लिए हुए थे। वैदिक शिक्षा के आदर्श न केवल तत्कालीन परिस्थितियों के लिए उपयुक्त थे, वरन शाश्वत प्रभाव को भी लिए हुए थे। शिक्षा के उद्देश्य। शिक्षा का उद्देश्य केवल विषयों का अध्ययन और उनका यथा योग्य ज्ञान प्राप्त करना ही नहीं, बल्कि शिक्षा मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास में सहायता प्रदान करती है और उसकी मानसिक प्रवृत्तियों पर ज्ञान रूपी अंकुश से नियंत्रण करती है। मानव का संबंध केवल इसी जीवन से नहीं है, बल्कि उसका उद्देश्य तो मोक्ष प्राप्त करना तथा उस परमात्मा में मिल जाना है जिसने की इस सृष्टि की रचना की है। शिक्षा मानव मात्र में उस चेतना को जगाती है जिससे कहा जा सके कि इस संसार में और जीवन का अंत भले ही हो जाए पर उसकी आत्मा अमर है तथा वह नवीन रूप धारण करती रहती है। गीता में कहा भी गया है कि जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़कर नवीन वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार मानव आत्मा नवीन शरीर रूपी वस्त्र धारण करती है और पुराने शरीर रूपी वस्त्र को छोड़ दिया करती है। मनुष्य का नैतिक और बौद्धिक विकास करना शिक्षा का कार्य है। यही कारण है कि द्विजों के लिए अपने वर्ण के अनुसार विषयों के अध्ययन के अतिरिक्त वेद वेदांग व्याकरण दर्शन आदि विषयों का अध्ययन भी आवश्यक था, जिससे कि उनके ज्ञान चक्षु मुकुलित हो सके और वह लौकिक तथा पारलौकिक विषयों का समझ सके। इसी उद्देश्य को लेकर प्राचीन शिक्षा प्रणाली निर्धारित की गई थी, किंतु उसका विकास एक क्रम से हुआ। शिक्षा का स्तर कभी गिरने नहीं दिया गया, नहीं तो इस देश की संस्कृति को बहुत ठेस पहुंचती, वह नष्ट हो जाती, वह कुम्हला जाती और विनष्ट होकर विलीन हो जाती। लेकिन हमारी संस्कृति तो गंगा की धवलधार की तरह आज भी प्रवाहमान है। उसकी निर्मलता आज भी बनी हुई है, इसका एकमात्र से हमारे देश की प्राचीन शिक्षा प्रणाली को दिया जा सकता है। प्राचीन शिक्षा प्रणाली ने अध्ययन के लिए वर्ण के आधार पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं लगाया है। हाँ, इतना अवश्य था कि स्त्रियां तथा शूद्र वेदों का अध्ययन नहीं कर सकते थे, पर उनके लिए अन्य विषयों के द्वार खुले थे जिनका कि वे अध्ययन कर सकते थे। इसलिए हमको बहुत सी विदेशियों का उल्लेख देखने को मिलता है। वैदिक काल से ही भारत में शिक्षा का मूल तात्पर्य रहा है कि शिक्षा प्रकाश का वह स्रोत है जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सच्चे मार्ग का प्रदर्शन करती है। एक विचारक का कहना है कि ज्ञान मनुष्य का तीसरा नेत्र है जो उसको समस्त तत्वों के मूल को समझने में समर्थ बनाती है तथा उसे सही कार्यों में प्रवृत्त करती है। अनेक संत यो छेदी परो छात्रस्य दशकम सर्वस्य लोचनम शास्त्रम यस्य नास्तन्द्य एव सः। महाभारत के अनुसार विद्या के समान कोई दूसरा नेत्र नहीं होता। विद्या हमें परलोक में मोक्ष दिलाती है तथा इस संसार में समृद्धि और प्रगति। विद्या में हमें जिस ज्योति की प्राप्ति होती है वह संशयों का उच्छेदन करती है, कठिनाइयों को दूर हटाती है तथा जीवन के वास्तविक महत्व को समझने योग्य बनाती है। जिसे ज्ञान की ज्योति उपलब्ध नहीं वह अंधा है। शिक्षा से स्त्री तथा पुरुष को जिस दृष्टिकोण की उपलब्धि होती है उससे उनकी बुद्धि बल और कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। प्राचीन भारतीयों ने दृढ़ता से कहा था कि विद्या से विकसित और परस्कृत बुद्धि ही सच्चा बल है। शिक्षा से तमाम लाभ ही लाभ हैं। शिक्षा से इन्हीं आदर्शों के आधार पर हमारे देश के प्राचीन शिक्षा का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। प्राचीन काल में शिक्षा के आदर्शों पर प्रकाश डालते हुए डॉक्टर एस अल्तेकर ने लिखा है कि ईश्वर भक्ति एवं धार्मिकता की भावना, चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व का विकास, नागरिक एवं सामाजिक कर्तव्यों का पालन, सामाजिक कुशलता की उन्नति एवं राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण और प्रसार प्राचीन भारत में शिक्षा के मुख्य आदर्श तथा उद्देश्य समझे जाते थे। वैदिक काल की शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों का उल्लेख निम्नलिखित है। नंबर एक, चरित्र निर्माण। वैदिक कालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य था बालक का चरित्र निर्माण करना। उस समय एक विद्वान से एक चरित्रवान व्यक्ति उत्तम समझा जाता था। मनुस्मृति में ऐसा कहा गया है कि उन वेदों के विद्वानों से जिनका जीवन पवित्र नहीं है वह व्यक्ति कहीं अच्छा है जो सच्चरित्र है परंतु वेदों का कम ज्ञान रखता है। गुरुकुल की शिक्षा में चरित्र निर्माण पर अत्यधिक बल दिया गया था। इस कार्य के लिए ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना, पाठ्य पुस्तकों में सदाचार के उपदेशों का समावेश, आचार्यों के द्वारा सदाचार के उपदेशों को सुनने, राष्ट्र के महान पुरुषों के आदर्शों की विद्यार्थियों के सामने पुनरावृत्ति की जाती थी तथा छात्रों के चरित्र का निर्माण करने के लिए उपयुक्त वातावरण का सृजन किया जाता था। नंबर दो, ईश्वर भक्ति एवं धार्मिकता। वैदिक काल में धर्म को बड़े आदर की दृष्टि से देखा जाता था। ऋषि, महर्षि, पुरोहित आदि लोग शिक्षा का निर्धारण तथा शिक्षा देने का कार्य करते थे। अतएव उस काल की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य भक्ति तथा धर्म के नियमों को कठोरता के साथ पालन करना था। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए विभिन्न संस्कारों की व्यवस्था थी। बालक को नियम पूर्वक दैनिक कार्य करने होते थे। वह विभिन्न धार्मिक कार्यों में सम्मिलित होता था और संध्या पूजन विधिवत करता था। इस प्रकार गुरुकुल का सारा वातावरण धार्मिक भावना से भरा पूरा था। नंबर तीन, व्यक्तित्व का विकास करना। वैदिक काल की शिक्षा में बालक के व्यक्तित्व निर्माण पर विशेष बल दिया जाता था। व्यक्तित्व में आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, आत्मसंयम, न्याय, विवेक, कुशल वक्ता होना, वाद विवाद करने की योग्यता होना, आदर्श चरित्रवान होना आदि गुण आवश्यक समझे जाते थे। इस कार्य के लिए व्यक्ति में आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, आत्मसंयम, न्याय आदि गुणों का विकास बालकों में किया जाता था तथा समय समय पर गोष्ठियां की जाती थी और उनमें भाषण देने का अवसर दिया जाता था। ये सब जो गुण बालकों में लाए जाते थे इनका केवल सैद्धांतिक पक्ष ही महत्वपूर्ण नहीं था बल्कि क्रियात्मक पक्ष को भी महत्व दिया जाता था। नंबर 4 राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण तथा प्रसार करना। प्राचीन कालीन संस्कृति का एक उद्देश्य राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण एवं उसका प्रसार करना भी था। उनको इस प्रकार की शिक्षा प्रदान की जाती थी कि वे अपनी साहित्यिक सांस्कृतिक तथा व्यवसायिक परंपरा का संरक्षण कर सके। वर्ण व्यवस्था तो थी ही, इसी के अनुसार लोग कार्य करते थे। परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय संस्कृति की सुरक्षा को बड़ा बल मिलता था। जैसे परिवार का बड़ा या पिता अपने पुत्र को अपने व्यवसाय की शिक्षा देता था, ब्राह्मण वेदों को कंठस्थ कर लिया करते थे तथा उसे अपने शिष्यों को भी कंठस्थ करा देना अपना कर्तव्य समझते थे। इस तरह वैदिक काल में राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण और प्रसार शिक्षा तथा वर्ण व्यवस्था के द्वारा विशेष रूप से होता था। उक्त वर्णन से यह बात एकदम स्पष्ट हो जाती है कि वैदिक काल में शिक्षा का उद्देश्य छात्रों का सर्वांगीण विकास करना था, ताकि वे अपनी, अपने परिवार की, समाज तथा राष्ट्र की लौकिक और पारलौकिक उन्नति में योग दे सके। नंबर 5 नागरिक तथा सामाजिक कर्तव्यों का पालन। वैदिक कालीन शिक्षा का एक उद्देश्य बालकों को नागरिक तथा सामाजिक कर्तव्यों का पालन करने योग्य बनाना भी था। इसके लिए बच्चों की भावना स्वार्थ रहित होकर दूसरे के लाभों को ध्यान में रखकर शिक्षा देना था। बालकों को इस बात का बोध कराया जाता था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसे समाज में ही रहकर अपना जीवन व्यतीत करना होता है। व्यक्ति को अपने समाज तथा घर परिवार और समाज के प्रति क्या उत्तरदायित्व तो होते हैं, आदि बातों का ज्ञान कराया जाता था। गुरुकुल की शिक्षा समाप्त करके जब शिष्य अपने गुरुदेव से अलग होने लगता था तो गुरु उसे अतिथि सत्कार, दीन दुखियों की सहायता तथा समाज सेवा आदि के उपदेश देकर भविष्य में अच्छे कार्यों को करने का आदेश देते थे। अतएव उक्त वर्णन से यह बात एकदम स्पष्ट है कि वैदिक काल में बालकों के सामाजिक तथा नागरिक भावना के विकास पर भी ध्यान दिया जाता था। नंबर 6 सामाजिक कुशलता का विकास करना। वैदिक कालीन शिक्षा में बालक को समाज में रहकर अपना जीवन सुखपूर्वक बिताने की भी शिक्षा दी जाती थी। इसके लिए व्यवसायिक शिक्षा भी प्रदान की जाती थी, जिससे कि बालक अपने व्यवहारिक जीवन में किसी प्रकार की असफलता का सामना न करने पावे। उसको शिक्षा द्वारा जीविकोपार्जन के योग्य बना दिया जाता था। उस समय वर्ण व्यवस्था भी विकसित हो गई थी। छात्रों के उनके वर्ण के अनुसार ही कार्य की शिक्षा दी जाती थी। इस तरह की शिक्षा प्राप्त करके वे केवल अपने परिवार तथा समाज के लिए ही नहीं बल्कि राष्ट्र तथा देश का कल्याण भी करने योग्य हो जाते थे। नंबर 7 मोक्ष की प्राप्ति। हमने पहले ही इस बात का उल्लेख किया है कि प्राचीन भारत में यह मान्यता थी कि जीवन का चरम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति करना था। भारतीय धर्म, अर्थ और काम का समावेशन इस प्रकार करने के लिए प्रयत्नशील रहते थे तथा उन्हें जीवन में परम शांति कोष्टक में मोक्ष की प्राप्ति हो। शिक्षा इस मोक्ष की प्राप्ति का मुख्य साधन था। यह मान्यता थी कि बिना शिक्षा के इस लक्ष्य की प्राप्ति संभव नहीं है। अतएव प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था यह लोक को बनाने की बात करती ही थी, साथ ही परलोक का तत्व भी उसमें विद्यमान था। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य मानव को मोक्ष प्राप्ति के हेतु अग्रसर करना था। शिक्षा का प्रारंभ। प्राचीन काल की शिक्षा का शुभारंभ उपनयन संस्कार से आरंभ किया जाता था। इसका प्रमाण श्रुति तथा स्मृति दोनों में ही मिलता है। इस शब्द का यह अर्थ है कि आचार के समीप जाना। उपनयन का यह संस्कार द्विजों के लिए क्रमशः 8वें, 11वें और 12वें वर्ष में रखा गया था, लेकिन कभी कभी यह 5वें, 6वें और 8वें वर्ष में ही संपादित कर दिया जाता था। इस संस्कार के समय गुरु अपने विद्यार्थी का अध्ययन के प्रति जिज्ञासा की जानकारी प्राप्त कर लिया करता था। उपनयन के पूर्व अक्सर पिता अथवा द्वारकाचार्य से बालक साधारणतः वर्णमाला, लिपि, गणना आदि का ही ज्ञान प्राप्त करता था। इसी समय से वेद और व्याकरण का भी ज्ञान आरंभ हो जाया करता था। इसी समय से विद्यार्थी की गणना भी वर्ण के अनुसार द्विज में होने लगती थी। उस समय की शिक्षा में शिष्य गुरु के ही पास रहकर शिक्षा प्राप्त किया करते थे। शिष्य को अंतेवासी कहा जाता था। यह ब्रह्मचारी होता था। जो ब्रह्मचारी अपने पिता से वैदिक शिक्षा प्राप्त करते थे उनको पितिरंतेवासी कहा जाता था। ब्रह्मचारी साधारण वस्त्र मिगछाला मौजी यज्ञोपवीत तथा कॉफी को धारण करके आचार्य के सामने जाता था। उसको ब्रह्मांजलि विधि से प्रमाण करता था। शिक्षा दाएं हाथ से दायां और बाएं हाथ से बायां पद स्पष्ट करके मस्तक में लगाकर गुरु के आशीर्वाद को प्राप्त करता था। आचार्य के अधोस्यमो कथन के उपरांत ही पाठ का आरंभ किया जाता था। प्रणव शब्द का प्रयोग अध्ययन के शुरू होने तथा आखिर में किया जाता था। शिक्षा मौखिक थी तथा यही मौखिक परंपरा निरंतर चलती रही। महाभारत में ऐसा उल्लेख मिलता है कि जो वेद को बेचते हैं या उनको लिखते हैं वे वैदिक शिक्षा का हनन करते हैं तब पाप के भागी है। शाराचार के व्याख्या के अनुसार बालक प्रातः उसी प्रकार के वेदों का उच्चारण करता है जैसा कि मेंढक अपने बाड़ी में बोलता है। स्मरण शक्ति के द्वारा ही ज्ञान का विकास होता है। वैदिक शिक्षा संपत्ति की भांति पिता से पुत्र को प्राप्त हो जाती थी और इसलिए यह कुछ कुलों में सुरक्षित भी थी जो शिक्षा के केंद्र थे। इन्हीं कुलों में वैदिक परंपरा के अनुसार शिक्षा देने का कार्य भी होता था। सूत्रों का स्मरण करके उनको अपनी स्मृति में सुरक्षित रख लेना ही काफी नहीं था वरन उनके गुण तत्वों को समझना भी प्रत्येक शिक्षार्थी के लिए आवश्यक था। विद्यार्थी का ज्ञान अगम काल स्वय अध्याय प्रवचन तथा व्यवहार से बढ़ता था। यही कारण है कि ऐसा कहा जाता है कि विद्यार्थी को एक चौथाई आचार से, एक चौथाई अपनी बुद्धि से, एक चौथाई विद्यार्थियों के संपर्क से, शेष जीवन के विभिन्न अनुभवों से प्राप्त करना चाहिए। प्राचीन भारत में शिक्षा संबंधी पाठ्यक्रम अथवा अध्ययन के विषय, पाठ्यक्रम या अध्ययन के विषय, प्राचीन काल की शिक्षा के अध्ययन विषयों के संबंध में पर्याप्त जानकारी प्राप्त है। वैसे निम्न वर्ण और उच्च वर्ण के अध्ययन के लिए ही पर्याप्त विषयों का विधान था। कुछ विषय ऐसे थे जिनको विशेष वर्ण ही पढ़ सकते थे। ब्राह्मण के लिए, बालक के लिए 6 अंगों और वेदों का अध्ययन आवश्यक था, लेकिन पहला मुख्य विषय व्याकरण ही था। उस समय अध्ययन के बाद ब्राह्मण लोग व्याकरण ही पढ़ते थे। यह आदिकाल की बात है, इसलिए वे वैदिक शब्दों का स्थानांतरण, उच्चारण आदि सही ढंग से कर पाते थे। लेकिन आगे चलकर परिस्थिति में कुछ परिवर्तन हुआ और व्याकरण पढ़ना निरर्थक समझा जाने लगा। कहा गया है अनर्थकम व्याकरणम। इसका परिणाम यह हुआ कि विद्यार्थियों का स्तर धीरे धीरे गिरने लगा और इसकी पूर्ति के लिए महाभाष्य की रचना की गई। वेदों में चारों ही अतिरिक्त 6 अंग यजुर्वेद की शाखाएं, सामवेद की शाखाएं, इतिहास और पुराण का भी अध्ययन होता था। शिक्षा में पुनः व्याकरण को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था। वैदिक संग्रह, छंद शास्त्र तथा धर्म शास्त्र की भी शिक्षा दी जाती थी। संस्कृत बौद्ध साहित्य में वर्णों के आधार पर अध्ययन विषयों का उल्लेख मिलता है। कुछ ऐसे विषय थे जिनको की सभी पढ़ सकते थे। ब्राह्मण बालक की शिक्षा 7वें वर्ष में प्रारंभ होती थी। उसको तीनों वेदों को कंठस्थ करना पड़ता था। इसके अध्ययन में मंत्रों के उच्चारण, अर्थ, स्थान तथा गूढ़ बातों को समझने का प्रयास किया जाता था। इन विद्यार्थियों के गुरु द्वारकाचार्य कहे जाते थे। इस संबंध में पंथक नामक विद्यार्थी का एक कथा है जो ना तो वर्णमाला और लिपि का ज्ञान ही प्राप्त कर सका था, ना वैदिक क्षेत्र में ही प्रगति कर सका। उसके पिता ने यही कर संतोष किया कि वह ब्राह्मण तो कहा ही जाएगा। क्षत्रिय बालकों की शिक्षा 11वें वर्ष में उपनयन संस्कार के बाद आरंभ की जाती थी। वे भी ब्राह्मण विद्यार्थी के ही तरह वेदों का अध्ययन करते थे, लेकिन उनके लिए यह अध्ययन ज्ञान के लिए ही होता था। उनको आगे चलकर अध्ययन करने का अधिकार न था, इसलिए उनकी शिक्षा के लिए अन्य विषयों पर अधिक बल दिया जाता था। मिलिंद बंधो का मत है कि क्षत्रिय बालक 18 कला और विज्ञान में पंडित होता था। इनमें सांख्य योग न्याय तथा वैशेषिक दर्शन, गणित, गांधर्व विद्या, चिकित्सा शास्त्र, चारों वेद, पुराण, इतिहास, ज्योतिष, माया, हेतु, युद्ध संबंधी विज्ञान, छंद शास्त्र, मुद्रा और श्रुति तथा स्मृति मुख्य विषय थे। दिव्यावदान के अनुसार क्षत्रिय बालक के लिए सैनिक शिक्षा परम आवश्यक थी। सैनिक शिक्षा में हाथी की सवारी और उसे युद्ध में चलाना, घोड़े की सवारी, धनुष को विद्या, पास, तोमर आदि का सीखना अनिवार्य था। ललित कवचतार में बुद्ध जी की विस्तृत शिक्षा का उल्लेख किया गया है। क्षत्रियों को साहित्यिक, सैनिक, व्यवहारिक शिक्षा प्रदान की जाती थी, जिससे कि वे शासन कार्य को संभाल सके और वेद देश की रक्षा के कार्य कर सके। वैश्य बालक की शिक्षा में व्यवहारिक विषयों के ऊपर अधिक बल दिया जाता था। बालक को लिपि, संख्या, गणना तथा विभिन्न प्रकार की मुद्राएं, उधार न्यास, निक्षेप, वस्तु परीक्षा की शिक्षा दी जाती थी। दिव्यावदान में विभिन्न प्रकार की मुद्राओं का उल्लेख किया गया है। इनकी जानकारी वैश्यों के लिए अति आवश्यक थी। उक्त विषयों के अतिरिक्त एक वणिक बालक के ऋण, ब्याज तथा रेहन और बिक्री से संबंध रखने वाले अनेक नियमों का ज्ञान प्राप्त भी करना आवश्यक था। जिज होने के कारण वणिक वेद वेदांग तथा अन्य संबंधित विषयों का भी अध्ययन कर सकता था। शूद्र बालक के संबंध में मात्र इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि उसको वेदों की शिक्षा नहीं दी जाती थी, लेकिन साधारण विषयों का अध्ययन वह कर सकता था, जैसे इतिहास, पुराण आदि। अध्ययन का स्थान, समय और शिक्षा प्रणाली। अध्ययन के विषयों के अतिरिक्त समय, स्थान तथा शिक्षा की प्रणाली का ज्ञान भी प्राप्त करना आवश्यक था। प्राचीन शिक्षा में गुरु का घर ही गुरुकुल का काम देता था और शिष्य की गुरु की छाया में अध्ययन करता था। याज्ञवल्क्य ने नैष्ठिक ब्राह्मणों का उल्लेख किया है, जो जीवन भर ब्रह्मचारी के रूप में अपने गुरु के यहाँ रहते थे। गुरु की अनुपस्थिति में उसके पुत्र और स्त्री अथवा अग्नि के साथ ही अपना जीवन व्यतीत करते थे। महाभारत में ऐसे भी विद्यार्थियों का उल्लेख किया गया है, जो एक गुरु के पास अस्थायी रूप से नहीं रहते थे। ऐसे शिष्यों को तीर्थकाक कहकर संबोधित किया जाता था। चूंकि वे कौवे के समान स्थान स्थान पर मंडराया करते थे, इसीलिए उनको यह नाम दिया गया। विद्यार्थी अंतेवासिन कहे जाते थे, अतः शिक्षक को अंते गुरु कहा जाता था। मांडविक शब्द भी आया है। यह शब्द प्राय ऐसे विद्यार्थियों के लिए था जो केवल वेद का अध्ययन करते थे। गुरुकुलों में शिक्षा देने वाले गुरुओं की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी और उनकी ख्याति के अनुसार ही विद्यार्थी उनके यहाँ शिक्षा प्राप्त करने के लिए आया करते थे। अध्ययन का काल, उस समय अध्ययन काल कितने वर्षों का होता होगा, यह प्रश्न हमारे सामने आता है। इस संबंध में पतंजलि का कहना है कि विद्या अध्ययन वसंत काल से प्रारंभ होता था। बालक अधिकतर दिन में अध्ययन करते थे, लेकिन रात में भी कंडे जलाकर पढ़ने का उल्लेख महाभारत में किया गया है। उस समय की शिक्षा प्रणाली के संबंध में भी हमको विस्तृत उल्लेख प्राप्त होता है। शिक्षा विषयों के आधार पर दी जाती थी। वाणिनी ने उन श्रेणियों का उल्लेख किया है जो वेद को कंठस्थ कर लिया करते थे। आचार्य को सुही भाव से शिक्षा प्रदान करता था। ओम कहकर राम के उच्चारण का कार्य आरंभ किया जाता था। केवल मंत्रों को ही याद कर लेना बड़ी बात ना थी, उनकी गुढ़ बातों को विद्यार्थी समझ लिया करते थे। नी पाठ सामूहिक रूप से होता था, जिससे कि व्यक्ति पाठ करते थे। संदेह दूर करने के लिए शिक्षक अपनी टीका या व्याख्या दे दिया करते थे। जो लोग शुद्ध पाठ करते थे, उनको साध्वध्यायीन की संज्ञा दी जाती थी, लेकिन सुस्त ढंग से पाठ करने वाले को विलंब ध्यायीन कहा जाता था। सुरीली बाणों में पाठ करने वाले विद्यार्थी को कोकिला विद्याहारी कहे जाते थे। पतंजलि ने अशुद्ध उच्चारण के लिए शिष्य को दंड देने का उल्लेख किया है। परीक्षा, उस समय परीक्षा भी होती थी। यह बात पाणिनि के दो सूत्रों से ज्ञातव्य है। उस पर कार्तिकी की व्याख्या के आधार पर जो बालक उच्चारण में जितनी अशुद्धियां करता था उतना ही उसके पीछे स्थान दिया जाता था। जैसे एक न्यायिक, सेवा न्यायिक तथा त्रय न्यायिक। विद्यार्थी कभी कभी एक दर्जन अशुद्धियां भी कर जाया करते थे, ऐसे विद्यार्थी को द्वादशा न्यायिक कहा जाता था। पतंजलि ने समपाठम पट्टि से उस विद्यार्थी को और संकेत किया है जो केवल एक ही बार मंत्र का उच्चारण करके उसको याद कर लिया करता था। यास्क ने अपनी निरुक्ति मात्र वेद को कंठक करने की तुलना तो उन सूखी हुई लकड़ियों के कुंदों से किया है जो जली आग पर रख दिए जाते हैं और इसलिए नहीं जल सकते। छोटे बालकों के लिए शिक्षा की प्रणाली भिन्न थी। दारकाचार्य ने इन बालकों की संख्या, लिपि, गणना इत्यादि विषयों में शिक्षा देते थे। यह शिक्षा लेखशाला अथवा लिपि शाला में दी जाती थी। लिखने की तख्ती को लिपि फलक कहा जाता था। यह तख्ती चंदन की हुआ करती थी। मसीपिंड और तीरक से दवात और लेखनी का संबंध है। उंगलियों को पोड़ों पर जोड़ने का उल्लेख महावस्तु में किया गया है। बालक इस कर्मिक अध्ययन से धीरे धीरे अपने ज्ञान का विस्तार कर लिया करते थे। कभी कभी विद्यार्थी शिक्षक के पास आते थे और भोजन के समय वे वहाँ से चले आते थे। प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था में गुरु शिष्यों का संबंध। नंबर एक, गुरु शिष्य का पवित्र संबंध। प्राचीन काल में गुरु तथा शिष्य का संबंध अत्यंत पवित्र और निकट का था। इस काल में शिष्य का संबंध जो था वह शायद ही शायद संसार के किसी भी काल में नहीं था। इन दोनों में अत्यधिक निकटता होती थी। अन्य शब्दों में कह सकते हैं कि इस काल में गुरु और शिष्य का संबंध पिता और पुत्र के संबंध की भांति होता था। जिस प्रकार से पिता अपना धन आदि पुत्र को समर्पित कर देता है, उसी तरह गुरु भी अपने संपूर्ण ज्ञान और तप आदि अपने विद्यार्थियों को समर्पित कर दिया करते थे। गुरु अपने सभी शिष्यों पर उसी प्रकार उदारता रखता था जिस प्रकार की पिता अपने सभी पुत्रों को समान समझता था। नंबर दो, आदर्श संबंध। प्राचीन कालीन शिक्षा प्रणाली में शिक्षक और शिक्षार्थी का संबंध आदर्श था। उसी संबंध के लिए आज हम लोग तरसते हैं। शिक्षक का आस्थान छात्र से बढ़कर था। विद्यार्थी के लिए आवश्यक था कि वह लौकिक तथा पारलौकिक कल्याण के लिए गुरु की कृपा प्राप्त करे। इस मितियों में भी शिष्य को यह आदेश दिया गया है कि वह गुरु की सेवा तथा अर्चना करे जिससे कि उसे संपूर्ण विद्या प्राप्त हो सके। मनु का कहना है कि शिष्य की सेवा मात्र अध्ययन के समय तक ही नहीं बल्कि अध्ययन काल समाप्त होने के बाद भी करनी चाहिए। अपने हाथों में शिक्षा का पात्र लेकर शिष्य गुरु के लिए अन्य तथा अन्य चीजों की भीख मांगता था तथा उसको जो कुछ भी शिक्षा प्राप्त होता था उसको वह गुरु को अर्पित कर देता था। पाणिनि तथा पतंजलि ने कुछ ऐसे भी शिष्यों का उल्लेख किया है जो केवल भोजन के लिए गुरु के यहाँ रहते थे, जैसे ओदन पाणिनि आदि। एक केवल चावल खाने के लिए ही गुरु के यहाँ व्याकरण पढ़ते थे। एक थे कम्बल चाणीय, एक केवल कम्बल के लिए व्याकरण पढ़ते थे। ऐसा भी हो सकता है इन सबों ने विभिन्न चरणों का उल्लेख किया हो, किंतु कुछ शिष्य गुरु के पास से केवल ओझल होना भी और कठिन बात ना थी। यदि वे देख लिए जाए तो शिक्षक उन पर अप्रसन्नता व्यक्त करता। नंबर तीन, कृतज्ञता एवं शुद्ध विचार। याज्ञवल्क्य के अनुसार शिष्य के लिए कृतज्ञता, अद्वैष्य भावना, शुद्ध विचार, सच्चाई, शांति भावना, शांति स्वभाव तथा दया आदि भावनाओं का होना अनिवार्य था। यदि विद्यार्थी अशुद्धि करता था अथवा गुरु की आज्ञा की अवहेलना करता था जो शिक्षक उसको दंड देता था। बहुत से जटिल स्वभाव वाले शिक्षक दारुणाध्यापक कहे जाते थे, लेकिन अच्छे स्वभाव वाले अध्यापकों का भी पर्याप्त उल्लेख मिलता है। ऐसे शिक्षक अत्यंत उच्च कोटि के थे। इसी प्रकार शिष्यों के लिए भी प्रखर बुद्धि के बालक को अग्निमणि कहा गया तथा क्रूर प्रकृति वाले बालक को जटिल कहकर संबोधित किया गया, लेकिन ऐसे छात्रों की संख्या अत्यधिक थी। अधिकांश शिक्षक तथा शिक्षार्थी निकट रहते थे और उनका परस्पर घनिष्ठ संबंध होता था। इस संबंध में सबसे अच्छा उदाहरण महानाग तथा मिलिंद पन्नहों में प्राप्त होता है। इसमें गुरु के 25 तथा शिष्य के 10 गुणों का उल्लेख किया गया है। दिव्यावधान में लिखा है कि शिक्षा या लोक संतृप्ति के लिए शिष्य गुरु के पास जाता था तथा दोनों ही स्वयं स्वयं कर्तव्यों का अध्ययन करते थे। मिलिंद पन्नहों के अनुसार शिक्षक में एक गुण होने चाहिए। नंबर एक, उसको सदा शिष्य का भार नहीं संकोच रूप से लेना चाहिए। नंबर दो, वह शिष्य को सेवन तथा निषेध की वस्तु बता दे। नंबर तीन, शिष्य किसमें आसक्त हो किसका परित्याग करे। नंबर चार, शयन भोजन स्वाय अध्याय स्वास्थ्य के संबंध में पूर्ण ज्ञान दे। नंबर पाँच, शिष्य को अच्छे बुरे का ज्ञान दे। नंबर छह, शिक्षा पाद में जो मिले उसे शिष्य के साथ बांट ले। नंबर सात, उसे भयभीत होने का आदेश दे। नंबर आठ, उसको अपनी शिक्षा का ध्येय बताए। नंबर नौ, शिष्य किन किन का साथ करे। नंबर दस, उसे किन गांव और बिहारों में जाना चाहिए। नंबर ग्यारह, उसे गुरु शिष्य के साथ ठट्ठा प्रगल्भा ना करे। नंबर बारह, उसके साथ आलाप करे। नंबर तेरह, दोस्त के लिए क्षमा मांगे। नंबर चौदह, शिक्षक में उत्साह हो। नंबर पंद्रह, खंडित शिक्षा कभी ना दे। नंबर सोलह, अधूरा पाठ ना पढ़ावे। नंबर अठारह, उसे पुत्रवत समझे। नंबर उन्नीस, उसे आगे बढ़ने का प्रयास करे। नंबर बीस, उसे पीछे हटने से रोके। नंबर इक्कीस, उसे बल प्रदान करे। नंबर बाईस, उसे स्नेह दृष्टि से देखे। नंबर तेईस, आपदा में उसका त्याग ना करे। नंबर चौबीस, उसकी ओर से ध्यान ना हटावे। नंबर पच्चीस, धर्मचरण के साथ रहे। शिष्य में इन दस गुणों का होना अनिवार्य है। नंबर एक, सुख दुख को समान समझे। नंबर दो, गुरु आदेश से धर्म का पालन करे। नंबर तीन, जो दे सकता है प्रसन्नता से दे। नंबर चार, धर्म को गिरते देख उसे उठाने का प्रयास करे। नंबर पाँच, सदैव ही अपने विचारों को ठीक रखे। नंबर छह, उत्तेजना के भाव से किसी अन्य गुरु के पास ना जाए। नंबर सात, अपने मन वाणी तथा कर्मों पर नियंत्रण रखना। नंबर आठ, शांति में सुख की प्राप्ति और शांति कामी हो। नंबर नौ, उसमें वैमनस्य का अभाव हो और धार्मिक व्यवहार में भी लड़ने की भावना ना हो। नंबर दस, बुद्ध धर्म संघ में आसक्ति हो। गुरु के प्रति कर्तव्य। महाभाग के प्रथम खंडांतर्गत बिहार के अंतरवासी का गुरु के प्रति कर्तव्य तथा उसके आपसी संबंधों का बड़ा सुंदर उल्लेख किया गया है। बुद्ध ने यह नियमित रूप से कह दिया था कि उपाध्याय पुस्तक में उपन्यास है, सबिहारिक को पुत्रवत और वह विद्यार्थी अपने गुरु को पिता तुल्य समझे। ये दोनों एक दूसरे का आदर विश्वास तथा सामान्य जीवन ध्येय द्वारा धर्म और विनय में पूर्णतया प्रगति कर उच्च श्रेणी पर पहुंच सकेंगे। इसके अलावा कुछ और साधारण विषयों का भी उल्लेख किया गया है, जैसे वस्त्र का उचित ध्यान, ठीक ढंग से वंदना करना, गुरु की सेवा करना, उसके वस्त्रों को ठीक प्रकार से रखना और समय पर देना तथा स्नान और शौच स्थान की सफाई आदि का ध्यान रखना। शिष्य गुरु के वस्त्र को भी धोता है और रंगता था। गुरु भी शिष्य का पूरा ध्यान रखता था। शिक्षा देते समय गुरु शिष्य से प्रश्न पूछता है, उसे उत्साह देता है, उसके आराम का ध्यान रखता था, उसके रोग ग्रसित होने पर उसकी सेवा सुश्रूषा करता था। बौद्ध ग्रंथों में लिखे गए बहुत से नियमों का पालन आज भी किया जा सकता है। शिक्षक अपने शिष्य को पुत्र के समान स्नेह दे, इसमें तो कोई खास बात नहीं है। गुरु के लिए पहले यह अनिवार्य था कि वह अपने शिष्य से कोई भी बात छिपाए हुए नहीं। सुश्रुत ने तो यहाँ तक लिखा है कि पढ़ाते समय गुरु शपथ ले कि वह विद्यार्थी से शिक्षा संबंधी कोई भी बात ना छिपाएगा। यदि ऐसा करेगा तो उसका विनाश हो जाएगा। तैतरी आरण्यक में गुरु को आदेश दिया गया है कि वह पूरे उत्साह के साथ शिष्य को शिक्षा दे। सत्यपथ ब्राह्मण में भी गुरु से कहा गया है कि पढ़ाते समय वह शिष्य से कुछ भी ना छिपाए। मनु ने भी शिष्य के आचरण संबंधी नियमों का उल्लेख किया है। यहाँ हम प्राचीन भारत में गुरु शिष्य संबंधों की स्थापना करने के लिए गुरु के प्रति छात्रों के कर्तव्य और छात्रों के गुरु के प्रति कर्तव्यों की तालिका प्रस्तुत कर रहे हैं। नंबर चार, गुरु के प्रति छात्रों के कर्तव्य। नंबर एक, शिष्य प्रातः काल उठकर गुरु का चरण स्पर्श करता था। नंबर दो, गुरु के स्थान पूजा और दातौन आदि का सामान इकट्ठा करते थे। नंबर तीन, शिष्य गुरु आश्रम की गांवों को चराया करते थे। नंबर चार, शिष्य गुरु के भिक्षा मांग कर लाते थे। नंबर पाँच, शिष्य गुरु के खेतों में काम करते थे। नंबर छह, शिष्य गुरु गृह की आग को सदा जिंदा रखते थे। नंबर सात, शिष्य गुरु के गृहस्थी के छोटे कार्यों को करते थे। नंबर आठ, शिष्य गुरु की हर आज्ञा का पालन करते थे। नंबर नौ, शिष्य गुरु के आदेशों का अपने जीवन भर पालन करते थे। नंबर दस, गुरु को गुरुदेव आदि शब्दों से संबोधित किया जाता था। नंबर ग्यारह, गुरु को ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर, देव, पर ब्रह्मा आदि गौरवपूर्ण स्थान दिया जाता था। शिष्यों के प्रति गुरु के कर्तव्य। नंबर एक, छात्रों के रहन सहन तथा पालन पोषण की व्यवस्था करना। नंबर दो, छात्रों के स्वास्थ्य तथा उनके चरित्र विकास का ध्यान रखना। नंबर तीन, शिष्य के बीमार होने पर पिता के समान उनकी सेवा करना। नंबर चार, शिष्यों के सुख दुख को अपना सुख दुख समझना। नंबर पाँच, शिष्यों की समस्याओं का समाधान करना। नंबर छह, अध्यापन तथा ज्ञान वृद्धि के लिए प्रयास करना। नंबर सात, छात्रों को जिज्ञासा को शांत करना। नंबर आठ, शिष्यों के प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना। नंबर नौ, छात्रों में आदर्श गुणों का विकास करना। नंबर दस, छात्रों को बुरी आदतों का छुड़ाना। नंबर ग्यारह, छात्र को भावी जीवन के लिए तैयार करना। नंबर बारह, छात्रों का सर्वांगीण विकास करना। अनुशासन, अनुशासन तथा छात्र जीवन का नियंत्रण करने वाले नियम। च, अनुशासन का क्षेत्र अत्यंत व्यापक था। विद्यार्थी जीवन पर विद्यालय में गुरु के आश्रम में रहता था और गुरु की आज्ञाओं का पालन करता था। उसका पूरा जीवन अनुशासन के कठोर नियमों से घिरा हुआ था। हर विद्यार्थी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता था। विद्यार्थी अपने गुरु को राजा, महाराजा, पिता माता, गुरु देवता आदि सब कुछ समझते थे। गुरु के प्रति छात्रों का असीमित प्रेम था तथा उनके द्वारा मिलने वाली समस्त शिक्षा शिष्य के जीवन में आच्छादित रहती थी। विद्यार्थी जीवन में ही छात्रों को अनुशासन सिखाया जाता था। वह उनके जीवन को जीवन भर काम आता था। वे अपने जीवन भर अनुशासित रहते थे। छात्रों को अनुशासित रखने के लिए शारीरिक दंड की आवश्यकता नहीं समझी जाती थी। नंबर छह, विद्यार्थी जीवन को नियंत्रित करने वाले नियम। वैदिक काल में विद्यार्थी अपने गुरुदेव के आश्रम में ही रहते थे, अतएव उनके खान पान, रहन सहन, आचार विचार, वेशभूषा आदि सबके निश्चित नियम थे और नियमों का पालन करना हर किसी के लिए आवश्यक था। ये नियम अनेक थे, उनका उल्लेख नीचे किया जाता है। नंबर एक, सवेरे उठना। गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने वाले प्रत्येक विद्यार्थी के लिए यह आवश्यक था कि वह सूर्य देव के निकलने के पहले ही अपना बिस्तर त्याग दे अथवा जग जाए। यहाँ छात्रों को दिन के समय सोने नहीं दिया जाता था। नंबर दो, प्रार्थना का नियम। प्राचीन काल में गुरु के आश्रम में शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी के लिए आवश्यक था कि वह प्रातः काल गुरु का चरण छुए। उसे तीन या चार बार प्रार्थना करनी पड़ती थी। प्रार्थना करने का समय प्रातः काल, मध्याकाल तथा सायंकाल होता था। विद्यार्थी प्रार्थना कार्य केवल जिहा से नहीं बल्कि अंतःकरण से करते थे। नंबर तीन, स्नान का नियम। गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने वाले हर विद्यार्थी को स्नायु के तनाव को दूर करने के लिए स्नान करना आवश्यक था। मनु के अनुसार हर विद्यार्थी को दिन में दो बार स्नान करना चाहिए तथा वशिष्ठ संहिता के अनुसार दिन में तीन बार स्नान करना आवश्यक था। खान पान नंबर चार, खान पान के नियम। उक्त नियमों के अनुसार ही खान पान के भी नियम थे। मनु के अनुसार दिन में दो बार ही भोजन करना चाहिए, प्रातः और संध्या के समय। दोनों भोजनों के मध्य काल में अन्य बिल्कुल ग्रहण नहीं करना चाहिए। छात्रों को मांस, बासी भोजन, मद्यपान आदि सेवन के लिए वर्जित कर दिया गया था। छात्रों को इस बात के लिए भी आदेश होता था कि वे अधिक भोजन ना करें, क्योंकि अधिक भोजन करना रोग का कारण होता है। इससे बालक अपना आध्यात्मिक विकास नहीं कर सकता है। नंबर पाँच, पहनावा। उपनयन संस्कार के उपरांत छात्रों को मेखला धारण करनी होती थी। वह वर्णों के अनुसार विभिन्न वस्तुओं की होती थी। ब्राह्मणों की मेखला मूज की, क्षत्रियों की तांत की तथा वैश्यों की मेखला ऊन की होती थी। शरीर के ऊपर के भाग को ढकने के लिए ब्राह्मण काले मृग, क्षत्रिय चित्तीदार मृग, वैश्य बकरे की छाल का प्रयोग करते थे। नीचे के भाग को ढकने के लिए ब्राह्मण सन, क्षत्रिय रेशम और वैश्य ऊन के वस्त्रों का प्रयोग करते थे। छात्र अंजन, जूता तथा अन्य सुगंधित चीजों का प्रयोग नहीं करते थे। उसके साथ ही साथ वे शरीर को सजाने वाले किसी भी साधन का प्रयोग नहीं कर सकते थे। नंबर छह, शादी आदतों का नियम। गुरु आश्रमों में शिक्षा प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को सादा जीवन बिताना पड़ता था। चाहे जिस किसी वर्ग का विद्यार्थी हो, चाहे धनी घर का विद्यार्थी हो अथवा गरीब घर का हो, सबको एक ही प्रकार के जीवन स्तर से गुजरना पड़ता था। सबको विद्यार्थी जीवन की कठिनाइयों से समान रूप से गुजरना पड़ता था। नंबर सात, मानसिक तथा नैतिक अनुशासन। प्राचीन काल की शिक्षा में मानसिक तथा नैतिक अनुशासन पर बल दिया जाता था। अर्थशास्त्र कहता है कि छात्रों को काम, क्रोध, मद, लोभ, मन, हर्ष आदि बातों से दूर रहना चाहिए। छात्रों को जुआ खेलने, गाय की हिंसा करने, मिथ्या भाषण, गाली, चुगलखोरी, पशु वध करने, दूसरे का हृदय दुखाने, संगीत, नृत्य, भूत क्रीड़ा आदि से बहुत दूर रहना चाहिए। इस प्रकार से छात्रों में मानसिक अनुशासन की सृष्टि होती थी। नंबर आठ, अविवाहित जीवन। वैदिक काल के आश्रमों में जो विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते थे, उनका विद्यालय काल तक अविवाहित रहना पड़ता था। जीवन में यौन प्रवृत्तियों को नियंत्रित करना पड़ता था। छात्र ना स्त्री को देख सकता था और ना ही उसको छू सकता था। डॉक्टर पी एन प्रभु ने लिखा है कि अविवाहित जीवन के लिए ब्रह्मचर्य का यह युग विद्यार्थी जीवन के लिए अति आवश्यक समझा जाता था। इसलिए कालांतर में यह संस्कृति शब्द विद्यार्थत्व के अर्थ में प्रयोग किया जाने लगा और इस प्रकार ब्रह्मचर्य शब्द का पर्यायवाची हो गया। प्राचीन भारत में विभिन्न युगों में नारी शिक्षा। प्राचीन काली शिक्षा प्रणाली की रूपरेखा का उल्लेख किया गया है। अब देखना है कि उस समाज में नारी शिक्षा की क्या स्थिति थी। इस बात की जानकारी के लिए हम नारी शिक्षा को तीन कालों में देखने का प्रयास करेंगे। ये तीनों काल प्राचीन काल के ही अंतर्गत आते हैं। नंबर एक, वैदिक काल में नारी शिक्षा। नंबर दो, ब्राह्मण काल में नारी शिक्षा। नंबर तीन, बौद्ध काल में नारी शिक्षा। नंबर एक, वैदिक काल में नारी शिक्षा। इस काल में पुरुषों की भांति स्त्रियों को भी शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। बालकों की भांति बालिकाओं का भी विद्या अध्ययन आरंभ करने के लिए उपनयन संस्कार होते थे। यह संस्कार उनके लिए अनिवार्य था। उन्हें भी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके सभी नियमों का पालन करना होता था। उस समय की रानियों ने संहिताओं का भी निर्माण किया था। अनेक शिष्याओं ने वाद विवाद प्रतियोगिताओं में भाग भी लिया था। इस संबंध में गार्गी का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। राजनीति और युद्ध विद्या में भी नारी निपुण थी। वैदिक काल में बालिकाओं की शिक्षा गुरुकुल में ना होकर घर पर ही होती थी। यहाँ वे गृहस्थिक जीवन से संबंधित ज्ञानार्जन करती थी। घर में उनके माता पिता, ज्येष्ठ भाई बहन या कुल पुरोहित शिक्षा प्रदान करते थे। धनी लोगों के घर में अध्यापकों द्वारा अध्यापन कार्य होता था। वैदिक काल की शिक्षा से पता चलता है कि यद्यपि इस काल में सह शिक्षा का प्रचलन नहीं था, किंतु इसका पूरी तरह निषेध भी नहीं था। स्त्रियों को धर्म साहित्य के अलावा संगीत, नृत्य आदि ललित कलाओं की भी शिक्षा दी जाती थी। स्त्री शिक्षा का यह कार्यक्रम प्राचीन काल से लेकर 200 ईसा पूर्व तक अबाध गति से चलता रहा। इसके बाद समाज में जैसे जैसे स्त्रियों का महत्व कम होता गया, वैसे वैसे स्त्री शिक्षा का पतन होता गया। नंबर 2, ब्राह्मणीय काल। वैदिक काल के बाद स्त्रियों पर कड़े प्रबंध लगाए गए, इसलिए उनको शिक्षा प्राप्त करने का अवसर कम ही मिल पाता था। नंबर 3, वैद्य काल में स्त्री शिक्षा। बौद्ध काल में स्त्रियों को संघ में प्रवेश की आज्ञा ना थी, लेकिन बाद में इनको भी संघों में प्रवेश की आज्ञा मिल जाने के कारण स्त्री शिक्षा को बहुत प्रोत्साहन मिला। बौद्ध धर्म की आज्ञा के अनुसार बौद्ध भिक्षुओं को जीवन भर ब्रह्मचारी रहना पड़ता था, अतएव संघ में स्त्रियों के आने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, लेकिन बाद में उनको संघ में प्रवेश की आज्ञा मिल गई। स्त्रियों की शिक्षा के लिए अलग बिहारों और मठों की स्थापना हुई। यहाँ ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए धर्म शास्त्रों तथा साहित्य का मनन कर वे अपना मानसिक विकास करने लगी। इस समय विदुषी महिलाएं हो चुकी थी। सम्राट अशोक की बहन संघमित्रा लंका इत्यादि देशों में धर्म का प्रचार करने के लिए गई थी। अल्तेकर ने लिखा है, स्त्रियों के संघ में प्रवेश करने की आज्ञा ने स्त्री शिक्षा को विशेष रूप से समाज के कुलीन और व्यवसायिक वर्गों की स्त्रियों की शिक्षा को बहुत काफी प्रोत्साहित किया, लेकिन इस काल में केवल उच्च वर्ग की स्त्रियों को ही शिक्षा प्राप्त हो सकी। प्राचीन भारत के प्रमुख शिक्षा केंद्र। नंबर 1, नालंदा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। नालंदा बिहार प्रांत में पटना से लगभग 50 मील दक्षिण की ओर स्थित है। नालंदा के प्रमोद वन में रहकर भगवान बुद्ध ने अनेक धर्मोपदेश दिए थे। उनके प्रथम शिष्य सारिपुत्र का जन्म स्थान यहाँ पर था। जब सारिपुत्र का चैत्य देखने के लिए यहाँ पर आए तो यहाँ पर उन्होंने एक विशाल विहार बनवाया था। अतएव कहा जा सकता है कि महान सम्राट अशोक नालंदा के पहले संस्थापक थे। नालंदा का महत्व धीरे धीरे शिक्षा की दृष्टि से बढ़ता गया, लेकिन शिक्षा केंद्र के रूप में इसकी ख्याति 5वीं शताब्दी से हुई थी। 410 ईस्वी में चीनी यात्री फहियान भारत आया, उस समय नालंदा की ख्याति शैक्षिक केंद्र के रूप में काफी बढ़ गई थी। इसके बाद लगभग 3 शताब्दियों तक यह शिक्षा केंद्र उन्नति के पथ पर निरंतर बढ़ता ही गया। 7वीं शताब्दी में जब चीनी यात्री हेनजांग भारत आया तो उसने नालंदा का विशद वर्णन किया। उसके इस यात्रा वर्णन से ज्ञात होता है कि उस समय नालंदा अपने वैभव के दिन देख रहा था। इसकी उन्नति में गुप्त सम्राटों का विशेष योगदान रहा। कुमारगुप्त प्रथम 414 ईस्वी से 445 ईस्वी ने एक अति विशाल विश्वविद्यालय भवन का निर्माण कराया। इसके बाद गुप्त वंश के सम्राटों ने इसके प्रत्येक चरण के विकास में अपना पूरा योगदान दिया था। नंबर 2, विश्वविद्यालय भवन। यह विश्वविद्यालय 1 मील लंबे आधे मील चौड़े क्षेत्र में स्थापित किया गया था। यह क्षेत्र एक विशाल और मजबूत चार दीवारी से घेर दिया गया था। एक बहुत बड़ा प्रवेश द्वार बना था, इसी से होकर लोग विश्वविद्यालय के भीतर प्रवेश करते थे। विश्वविद्यालय द्वारा द्वार पर एक पंडित होता था। विश्वविद्यालय के प्रांगण में भीतर 8 बड़े बड़े सभा भवन बने थे। यहाँ पर विद्यार्थियों को भाषण दिए जाते थे। यहाँ पर 300 अध्ययन कक्ष बने थे। इनमें अध्ययन अध्यापन का कार्य होता था। हर एक भवन 6 मंजिले कक्ष बने थे। इनकी ऊंची मीनारें आकाश को छूती थी। सभा भवन तथा अध्ययन कक्षों के चारों तरफ शिक्षकों और छात्रों के रहने के लिए चार मंजिले भवन बने थे। संपूर्ण विश्वविद्यालय भवनों को देखने से यह ज्ञात होता था कि इस विश्वविद्यालय का निर्माण एक निश्चित योजना के आधार पर हुआ था। उस समय इस देश में वास्तुकला तथा इंजीनियरिंग की उन्नति काफी बढ़ चुकी थी। विश्वविद्यालय में ही एक विशाल पुस्तकालय था। यह पुस्तकालय भवन 9 मंजिल था, जिसकी ऊंचाई लगभग 300 फुट थी। इसमें सभी विषयों की पुस्तकों का विशाल संग्रह था। संपूर्ण पुस्तकालय 3 भागों में विभाजित कर दिया गया था, जो रत्नसार, रत्नरधि, रत्नरजक नाम से संबोधित किए जाते थे। इन सभी भवनों के अलावा मैदान में चारों तरफ पवित्र और निर्मल जल के लगभग 12 सरोवर थे। इसमें कमल खिले रहते थे, जिनमें की विश्वविद्यालय के भीतरी शोभा में 4 चांद लग जाता था। इन सरोवरों के पवित्र जल में विद्यार्थी समुदाय जल क्रीड़ा भी करता रहा। नंबर 3, विश्वविद्यालय में प्रवेश। इस विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रवेश बड़ी कठिनाई के साथ होता था। इसका कारण यह था कि प्रवेश के लिए इच्छा रखने वाले विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय के दरवाजे पर द्वार पंडित के द्वारा परीक्षा ली जाती थी। यहाँ जो विद्यार्थी सफल हो जाते थे, केवल उन्हें ही विश्वविद्यालय में प्रवेश का अधिकार होता था। प्रवेश के लिए इच्छुक विद्यार्थियों में केवल 10% विद्यार्थी ऐसे होते थे जिनको की विश्वविद्यालय में प्रवेश की अनुमति प्राप्त हो जाती थी। इस विश्वविद्यालय का शिक्षा स्तर वास्तव में बहुत ऊंचा था, इसलिए देश तथा विदेश से आए हुए विद्यार्थियों की भी भीड़ सी लग जाती थी। इस तथ्य पर प्रकाश डालते हुए विद्वान केएल वकील ने लिखा है कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए न केवल भारत के विभिन्न भागों से बल्कि विदेश जैसे तिब्बत, चीन, कोरिया, जापान, वर्मा, सुमात्रा, जावा, तुर्किस्तान देशों से भी विद्यार्थी नालंदा विश्वविद्यालय में आते थे। नंबर 4, प्रबंध तथा प्रशासन। यहाँ का प्रबंध तथा प्रशासन आदर्श ढंग का था। इस विश्वविद्यालय में लगभग 10,000 विद्यार्थी और 1500 अध्यापक अध्ययन अध्यापन का कार्य संपादित करते थे। विश्वविद्यालय कई भागों में विभाजित था। इसका प्रबंध पूर्ण रूप से जनतंत्री प्रणाली पर आधारित था। विश्वविद्यालय के पूरे प्रबंध का नियामक भिक्षु महाअस्थायी ही होता था। यह विश्वविद्यालय का कुलपति अथवा अध्यक्ष कहा जाता था। वह भिक्षुओं के द्वारा निर्वाचित सर्वश्रेष्ठ विद्वान होता था। कुलपति ही सहायता के लिए परामर्श देने वाली 2 समितियां होती थी। इसमें पहली समिति शिक्षा संबंधी कार्यों, उदाहरण स्वरूप पाठ्य विषय, शिक्षकों के कार्य, कार्यक्रम, पुस्तकालय संचालन आदि में परामर्श तथा सहायता देती थी। दूसरी समिति आर्थिक प्रशासन विषयक कार्यों में सहायता देती थी। विभिन्न भागों के अध्यापकों का निर्वाचन विश्वविद्यालय संघ द्वारा होता था। इस विश्वविद्यालय के निवास, भोजन, वस्त्र और चिकित्सा आदि सभी बातों की व्यवस्था भी निःशुल्क होती थी। शुल्क तथा खर्च का यह सब भाग राजाओं और प्रजा पर होता था। राजा और प्रजा विश्वविद्यालय को भूमि तथा धन दान के रूप में देते थे। विश्वविद्यालय के पास दान में प्राप्त हुए 200 गांवों की आय थी और अनेक दिन समितियों के द्वारा इसका आर्थिक खर्च पूरा होता था। नंबर 5, विश्वविद्यालय का छात्रावास। नालंदा विश्वविद्यालय के छात्रावास की व्यवस्था बहुत ही सुंदर थी। 2 मंजिलों के 13 विहारों में छात्रों के निवास के लिए भारी संख्या में कमरा थे। कुछ कमरों में एक विद्यार्थी रहते थे और कुछ में 2-2। छात्रों का चयन करने के लिए हर कमरे में पत्थर की चौकी होती थी। दीपक रखने के लिए दीवट होता था। पुस्तकों को रखने के लिए आला बना हुआ था। कमरों का निर्धारण क्रम से होता था। यह क्रम वही होता था जिस क्रम से विद्यार्थी प्रवेश लेते थे। छात्रावास में भोजन के लिए बड़े बड़े चौके थे। इनमें भोजन पकाने का काम बिहार की ओर से निर्धारित कर्मचारी करते थे। पानी की व्यवस्था भी छात्रावास में बहुत ही अच्छी थी। हर किसी विभाग के आंगन के कोने में पक्के छायादार कुएं बने हुए थे। नंबर 6, पाठ्यक्रम। चीनी यात्री इत्सिंग नालंदा में लगभग 10 वर्ष तक रहा था। उसने विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम के संबंध में विस्तार के साथ उल्लेख किया है। विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म की दोनों ही शाखाओं जैसे महायान और हीनयान के अलावा वैदिक धर्म की भी शिक्षा प्रदान की जाती थी। अनेक धर्मों के तुलनात्मक अध्ययन का भी विस्तार पूर्वक अध्ययन कार्य होता था। इसके अतिरिक्त व्याकरण, वेद, ज्योतिष, दर्शन, पुराण, वास्तुकला, आयुर्वेद आदि की भी उच्च शिक्षा प्रदान की जाती थी। आजकल के समान ही यह विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था। नंबर 7, शिक्षण विधि। इस विद्यालय में निम्नलिखित शिक्षण विधियों का प्रयोग करके शिक्षा प्रदान की जाती थी। नंबर 1, मौखिक और पुस्तक व्याख्या विधि। नंबर 2, व्याख्यान विधि। नंबर 3, शास्त्रार्थ विधि। विश्वविद्यालय में प्रतिदिन 100 भाषण होते थे। ये भाषण विद्यार्थियों के लिए सुनना आवश्यक था। यहाँ के अध्यापक अपने ज्ञान और प्रतिभा के लिए विख्यात थे। हिंसांग ने कुछ प्रसिद्ध शिक्षकों के नाम गिनाए हैं। सुविख्यात नाम इस प्रकार है। नंबर 1, चंद्रपाल। नंबर 2, धर्मपाल। नंबर 3, ज्ञानमती। नंबर 4, श्रीमती। नंबर 5, प्रथामित्र। नंबर 6, स्थिरमणि। नंबर 7, नागार्जुन। नंबर 8, शीलभद्र आदि। नंबर 8, नालंदा विश्वविद्यालय का पतन। विद्या का यह महान केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय लगभग 800 वर्षों तक अपने ज्ञान के प्रकाश से विश्व को आलोकित करता रहा। देश विदेश से आए ना जाने कितने छात्र इसके चरणों में निवास करके पद धूलि प्राप्त करके ज्ञानी बने और इसके गौरव की रक्षा करते रहे। विद्वानों ने नालंदा विश्वविद्यालय की तुलना ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, पेरिस, हार्वर्ड तथा प्रयाग जैसे विश्वविद्यालयों से की है। इसने भारतीय संस्कृति के विकास, प्रसार तथा परिवर्धन में सराहनीय योगदान प्रदान किया है। प्राचीन भारत के प्रतीक इस विश्वविद्यालय को 11वीं शताब्दी के अंत में मुस्लिम आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने सदा के लिए धराशाही कर दिया। उसके भवन तथा पुस्तकालय में आग लगवा दी तथा ना जाने कितने भिक्षुओं और अध्यापकों को मौत के घाट उतार दिया। उन निर्मल हाथों को क्या कहा जाए जिन्होंने इसके कलेवर में आग लगाई। उस बुद्धि को कितना कोसा जाए जिसने इसके विनाश की राय दी। स्वयंभतः ऐसे पातकी व्यक्ति को मनुष्य की संख्या देना व्यर्थ है। इस संबंध में डॉक्टर पीएल रावण ने लिखा है कि यह ज्ञान प्रदीप जो युगों तक प्रकाशित बना रहा और जिसने आध्यात्मिक पवित्र एवं योग्य मानव जीवन को प्रोत्साहन प्रदान किया हमेशा के लिए बुझ गया। तक्षशिला। नंबर 4, तक्षशिला की स्थापना। रावलपिंडी की पश्चिमी दिशा में लगभग 20 मील की दूरी पर तक्षशिला गांधार प्रदेश की राजधानी थी। वाल्मीकि रामायण के अनुसार भरत ने इस नगर की नींव डाली थी और अपने पुत्र दक्ष को यहाँ वहाँ का शासक नियुक्त किया था। उसी के नाम पर वहाँ का नाम तक्षशिला पड़ा। यह भी कहा जाता है कि जन्मेजय का नाग यज्ञ इसी स्थान पर हुआ था। इस प्रकार अत्यंत प्राचीन काल से यह ब्राह्मणीय शिक्षा का प्रधान केंद्र रहा है। लेकिन इस बात के प्रमाणिक तथ्य हमें नहीं मिलते कि प्रारंभिक काल में उसने शिक्षा में क्या प्रगति की। यहाँ यह भी स्मरणीय है कि 5वीं शताब्दी में जब फाहान ने तक्षशिला को देखा तब वहाँ उसे विश्वविद्यालय के कोई भी अवशेष दृष्टि गोचर नहीं हुए। इतना अवश्य है कि ईसा पूर्व शताब्दी ईसा तक यह शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र माना जाता रहा और राजगृह काशी व मिथिला जैसे सुदूर स्थानों से विद्यार्थी वहाँ आते थे तथा सिकंदर के समय में वे अपने दार्शनिकों के लिए सुविख्यात था। इस तथ्य पर प्रकाश डालते हुए के एस वकील ने लिखा है, यह हिंदू तथा बौद्ध संस्कृति का केंद्र था जहाँ सैकड़ों की संख्या में विद्यार्थी एवं शिक्षक भारत के कोने कोने से एशिया के देशों से आते थे। नंबर 6, विश्वविद्यालय का प्रबंध। तक्षशिला में कोई सुव्यवस्थित विश्वविद्यालय अथवा शिक्षा संस्था नहीं थी, वरन यहाँ पर पारिवारिक प्रणाली के आधार पर शिक्षा प्रदान की जाती थी। विद्यार्थियों को शिक्षा शुल्क के अलावा भोजन तथा निवास का शुल्क देना पड़ता था। इस भुगतान के 3 रूप होते थे। ए रूप, नंबर 1 प्रवेश के समय 1,000 मुद्राएं प्रदान करना, नंबर 2 अध्ययन के उपरांत स्वर्ण मुद्राएं देने का वचन देना, नंबर 3 गुरुदेव की सेवा करना। इसी प्रकार से धनी या गरीब सभी विद्यार्थियों को अध्ययन करने का अवसर प्राप्त हो जाया करता था। एक अध्यापक के पास कभी कभी 500 तक छात्र हुआ करते थे। प्रवेश की न्यूनतम आयु 16 वर्ष थी। यह स्थान उच्च शिक्षा के लिए अत्यंत प्रसिद्ध था। यह निर्विवाद रूप से प्राचीन भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शिक्षण केंद्र था तथा लगभग 1000 वर्षों तक इसकी ख्याति देश विदेशों में व्याप्त थी। यहाँ दूर दूर से विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने के लिए आया करते थे। नंबर 4 पाठ्यक्रम। तक्षशिला चूंकि शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, इसलिए यहाँ उच्च स्तरीय विषयों का अध्ययन किया जाता था। इसके प्रमुख विषय निम्नलिखित थे। नंबर 1 वेदचर्या, 3 वेद, नंबर 2 वेदांत, नंबर 3 व्याकरण, नंबर 4 आयुर्वेद, नंबर 5 ज्योतिष, नंबर 6 किसी व्यापार, नंबर 7 तर्क शास्त्र, नंबर 8 सर्पदंश चिकित्सा, नंबर 9 सैनिक विद्या, नंबर 10 98 शिल्पों की शिक्षा। व्याकरण के जनक पाणिनि सुप्रसिद्ध राजनीतिक चाणक्य के तथा अर्थशास्त्र के रचयिता कौटिल्य भगवान बुद्ध के व्यक्तिगत चिकित्सक जीवक तथा भारतीय सम्राट चंद्रगुप्त और पुष्यमित्र ये सभी तक्षशिला की पावन धरती की ही उपज थे। भारतीय और ग्रीक कला के प्रशिक्षण के लिए यह स्थान अत्यधिक प्रसिद्ध रहा। विषयों का चुनाव करने में वर्ण व्यवस्था का कोई बंधन नहीं था। विद्यार्थी उक्त विषयों में से कोई भी विषय ले सकते थे। तक्षशिला में ऊंच नीच का भेदभाव न था और शुल्क देने वाले धनी छात्रों और शारीरिक श्रम करने वाले निर्धन छात्रों दोनों को एक ही प्रकार का सामान्य जीवन व्यतीत करना पड़ता था तथा भोजन वस्त्र रहन सहन भी सबका एक समान ही होता था, जिसके द्वारा वह भोग विलास की सामग्री ना रख सके। साथ ही शिक्षा में भी प्रत्येक वर्ग को समान सुविधाएं प्राप्त थी और विषयों के चयन में वर्ग की बाधकता ना थी। जहाँ क्षत्रिय ब्राह्मणों के साथ वेदा अध्ययन करते थे, जहाँ ब्राह्मणों के साथ वे धनुर्विद्या में कुशलता प्राप्त करते थे, विद्यार्थियों को न केवल ग्रीक भाषा की शिक्षा दी जाती थी अपितु ग्रीक युद्ध प्रणाली सिखाई जाती थी तथा चिकित्सा शास्त्र का अध्ययन अवधि 7 वर्ष की थी। तक्षशिला के पतन के दिन। अपने विशाल वैभव के दिनों में तक्षशिला को अनेक विदेशी आक्रमणों के निर्मल प्रहार सहने पड़े थे, इसलिए तक्षशिला के उत्थान और पतन दोनों ही होते रहे। इसकी प्रसिद्धि कुषाण शासक के अंत 250 ईस्वी तक रही। इसके बाद धीरे धीरे इसकी अवनति होती गई। 5वीं शताब्दी में जब महायान भारत आया था तो उस समय शिक्षा केंद्र के रूप में तक्षशिला का दीप बुझ चुका था। 7वीं शताब्दी में ह्वेनसांग ने इस शिक्षा केंद्र को देखकर अत्यधिक दुख व्यक्त किया था। 5वीं शताब्दी के मध्य में बर्बर हूणों ने इस शिक्षा केंद्र को विध्वंस करके इसको मिट्टी में मिलाकर छोड़ दिया। अब जिसकी केवल स्मृतियां ही जाग रही हैं। अन्य शिक्षा केंद्र। नंबर 1 विक्रमशिला। पाल वंश के प्रसिद्ध सम्राट धर्मपाल ने 8वीं शताब्दी में विक्रमशिला की स्थापना की थी। यह उत्तरी मगध में गंगा तट पर एक सुरम्य पहाड़ी पर स्थित था। स्वम्भतः यह पहाड़ी वर्धमान कहल गांव के समीप पत्थर घाट पहाड़ी ही है। धर्मपाल ने यहाँ अनेक बुद्ध मंदिर और विहार बनवाए और विहार के भवनों का निर्माण एक योजना के अंतर्गत ही हुआ जान पड़ता है। इन भवनों को चारों ओर से एक विशाल प्राचीर घेरे हुए खड़ी थी और मध्य में महाबोधि का एक विशाल मंदिर तथा अन्य छोटे छोटे सौ मंदिर भी थे। पालवंशी राजाओं ने 13वीं शताब्दी तक विश्वविद्यालय को प्रोत्साहन देने का क्रम अविच्छिन्न रखा। विक्रमशिला में मंदिरों के और आचार्य अध्यक्ष के रूप में 108 विद्वान नियुक्त किए गए थे। सामान्य व्यवस्था के लिए 6 अलग पंडित नियुक्त थे, अतएव कुल मिलाकर 114 विद्वान विश्वविद्यालय में सदैव रहा करते थे। चूंकि इस विश्वविद्यालय के भिक्षु उच्च कोटि के विद्वान होते थे, अतएव कम समय में ही इसकी ख्याति हिमालय पार कर गई थी। तिब्बत के अनेक ज्ञान पिपासु भारतीय पंडितों के चरणों में बैठकर अध्ययन करने आते थे। तिब्बत व विक्रमशिला में 4 शताब्दी तक ज्ञान विनिमय होता रहा। विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध विद्वान दीपंकर ने भी स्वयं तिब्बत जाकर धर्म प्रचार का कार्य किया था। कुछ समय बाद विक्रमशिला के विद्वानों की संख्या मिलकर 6 हो गई। प्रत्येक में 6 शिक्षक नियुक्त थे तथा इन 6 विद्वानों के मध्य एक सभा भवन था जिनमें 6 फाटक थे। प्रत्येक फाटक एक एक विद्यालय को संयोजित करता था और केंद्रीय महाभवन का नाम विज्ञान गृह था, जिसके बाहरी अहाते की दीवारें कलापूर्ण चित्रों से सुसज्जित थी। विश्वविद्यालय के भवनों की दीवारों पर सुविख्यात आचार्यों के चित्र भी थी और प्रधान फाटक के दाहिने स्तंभ पर नागार्जुन व बाएं पर कला के चित्र थे। प्रमुख द्वार पर पंडित नियुक्त थे जिनका कार्य विश्वविद्यालय में प्रवेश करने वाले विद्यार्थियों की परीक्षा लेना था। परीक्षा उत्तीर्ण किए बिना किसी छात्र को प्रवेश लेने का अधिकार न था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का प्रशासन एक अध्यक्ष व कुलपति द्वारा होता था और विभिन्न विभागों के शासन के सुप्रबंध के लिए विभिन्न सभाएं व समितियां थी। छात्रों के निवास, भोजन, पठन पाठन आदि सभी विषयों का समुचित प्रबंध विश्वविद्यालय में आयोजित रहता था। अध्यापकों का जीवन सादा सीधा होता था और एक आचार्य का व्यय समान भिक्षु के खर्च के 4 गुने से अधिक ना था। साथ ही नालंदा की अपेक्षा विक्रमशिला में पाठ्य विषय भी बहुत कम थे और व्याकरण, तर्क, दर्शन, तंत्र व कर्मकांड आदि अध्ययन का प्रमुख विषय था। पर कुछ समय बाद तंत्र विद्या को प्रधानता प्राप्त हुई तथा इसका शिक्षा पर घातक प्रभाव पड़ा। यह भी ज्ञात हुआ है कि इस विद्यालय के स्नातकों का समावर्तन के अवसर पर बंगाल के शासकों की ओर से उपाधियां या प्रमाण पत्र दिए जाते थे। स्थानीय विशिष्ट विद्वानों की स्मृति सर्वदा बनाए रखने के लिए बिहार के कक्ष पर उनके चित्र बनाए गए थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भी मुस्लिम आक्रांताओं का कुप भाजन बनना पड़ा और 1203 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने उसे नष्ट भ्रष्ट कर दिया। कहा जाता है कि मुसलमानों को इस बिहार से दुर्ग का भ्रम हो गया था और उन्होंने अधिकांश बौद्ध भिक्षुओं को तलवार के घाट उतार दिया था। जब उन्होंने पुस्तकों का अध्ययन करवाया तो उन्हें ज्ञात होता है कि वह दुर्ग नहीं अपितु एक विद्यापीठ था। महाअस्थावीर शाक्य भी श्रीभद्र अपने कुछ साथियों सहित जान बचाकर तिब्बत चले गए। नंबर 2, वल्लभी। इस संबंध में चीनी यात्री इत सिंह के वर्णन के अनुसार उत्तर भारत में नालंदा विश्वविद्यालय की भांति वल्लभी विश्वविद्यालय भी अपनी कीर्ति प्राप्त कर रहा था। यह विश्वविद्यालय काठियावाड़ में स्थित था। यह नालंदा के प्रतिद्वंदी के रूप में बौद्ध धर्म की द्वितीय शाखा हीनयान का प्रमुख केंद्र था। एक महत्वपूर्ण राज्य की राजधानी के अतिरिक्त यह एक बंदरगाह भी था। इत सिंह का कथन है कि यह उत्तर भारत का एक प्रधान शिक्षा केंद्र था। वस्तुतः यह नालंदा के प्रतिद्वंदी के रूप में बौद्ध धर्म की दूसरी शाखा हीनयान का प्रमुख केंद्र था। कहा जाता है कि ध्रुव प्रथम की राजकुमारी ददूरा ने वल्लभी का प्रथम विहार बनवाया था और 500 ईस्वी पूर्व में धारसेन ने एक और विहार बनवाने का आदेश दिया, पर वह 640 ईस्वी में वहां लगभग 10 विहार थे जिनमें 6000 भिक्षुओं को शिक्षा दी जाती थी। 7वीं शताब्दी के मध्य में स्थिर माते और गुणमती नामक प्रसिद्ध विद्वान हसी विश्वविद्यालय में थे और यह केवल बौद्ध शिक्षा का ही केंद्र न था बल्कि अपनी धार्मिक उदारता और बौद्धिक स्वतंत्रता के लिए प्रसिद्ध था। इसलिए गंगा की घाटी से ब्राह्मण अपने पुत्रों को अध्ययन के लिए वहां भेजते थे और यहां व्याकरण, व्यवहार शास्त्र, मोनमी और साहित्य आदि लौकिक विषयों की शिक्षा भी दी जाती थी तथा वल्लभी के स्नातकों को तत्कालीन शासन में उच्च पदों पर नियुक्त किया जाता था। नालंदा की भांति वल्लभी विश्वविद्यालय भी पुस्तकालय से सुसंपन्न था और विहारसेन के दान पत्र 569 ईस्वी पूर्व में पुत्रों के पुस्तकों के क्रय का आदेश भी मिलता है। चूंकि वल्लभी बड़ी समृद्ध पुरी थी और इनमें 100 करोड़पति नागरिक थे, अतः इन श्रेणियों से वल्लभी विश्वविद्यालय को पर्याप्त दान मिलता था। इस प्रकार बहुत दिनों तक वल्लभी विश्वविद्यालय को पर्याप्त दान मिलता रहा। इससे बहुत दिनों तक वल्लभी विश्वविद्यालय की आर्थिक स्थिति अच्छी रही और 775 ईस्वी तक सुसंपन्न स्थिति में उसका कार्य चलता रहा। पर अरबों के आक्रमण से वहां के तत्कालीन शासक नष्ट भ्रष्ट हो गए, लेकिन इतना होते हुए भी बारहवीं शताब्दी तक वल्लभी पश्चिमी भारत का एक प्रमुख शिक्षा केंद्र था। बंगाल जैसे सुदूर प्रदेशों से ज्ञान पिपासु यहाँ आए थे। नंबर 3 नदियां या नवद्वीप। नदिया का पुराना नाम नवद्वीप है। पूर्वी बंगाल में गंगा और जलांगी के संगम पर प्रगति के सुरम्य अंचल में यह एक सुप्रसिद्ध व्यापारिक और शिक्षण केंद्र रहा है। पालवंशी शासकों ने इसके विकास काफी बल दिया था, पर 11वीं शताब्दी के मध्य नवद्वीप के गौंड राजा लक्ष्मण सेन ने इसे अपनी राजधानी बनाया और इसके पश्चात इसकी ख्याति दूर दूर तक प्रसारित होने लगी। राजा लक्ष्मण सेन का मंत्री हलायुद्ध स्वयं सुप्रसिद्ध विद्वान और लेखक था और उनकी ब्राह्मण सर्वस्व, स्मृति सर्वस्व और मीमांसा सर्वस्व नामक कृतियां उल्लेखनीय भी है तथा उसके बड़े भाई ने भी पशुपति पर एक ग्रंथ की रचना की है। अतः स्वभावतः ही इस प्रदेश में विद्वानों का प्रसय और उत्साहन भी प्राप्त हुआ होगा। भारतीय साहित्य की अमर कीर्ति गीत गोविंद के पढ़ेता जयदेव भी इसी नवद्वीप के थे। उमापति की कविताएं और न्याय शास्त्र का एक प्रसिद्ध ग्रंथ स्मृति विवेक भी यहाँ उल्लेखनीय है। मुसलमानों के आक्रमण से नालंदा और विक्रमशिला का पतन हो जाने पर नवद्वीप का महत्व अधिक बढ़ गया और इसका सांस्कृतिक महत्व कम ना हुआ तथा कालांतर में बंगाल के मुस्लिम शासकों ने भी नदिया के सांस्कृतिक और शैक्षिक विकास में किसी प्रकार की बाधाएं नहीं आने दिया। ऐसा कहा जाता है कि नदिया का एक प्रतिभावान विद्यार्थी वासुदेव सर्वभाम मिथिला में त्याग व तर्क शास्त्र में शिक्षा प्राप्त करने गया था और वह तत्व चिंतन मणि नामक ग्रंथ को कंठ रूप कर वापस लौटा, क्योंकि मिथिला के पंडित अपने यहाँ की किसी पुस्तक को ले जाने, प्रतिलिपि करने व अनुवाद करने की अनुमति नहीं देते थे। नदिया लौटने पर इसी वासुदेव सर्वभाम ने नदिया में तर्क शास्त्र का सूत्रपात किया और कालांतर में उसके शिष्य रघुनाथ शिवमणि ने न्याय की एक नवीन विचारधारा का सूत्रपात किया। नवद्वीप में न्याय शास्त्र के अध्ययन की व्यवस्था भी हुई। आगे चलकर मथुरा नाथ रामचंद्र और गदाधर भट्टाचार्य नामक प्रसिद्ध न्यायाचार्य हुए। इस प्रकार यह परंपरा बहुत दिनों तक स्थिर रही और न्याय के अतिरिक्त नदिया में स्मृति तंत्र विद्या तथा ज्योतिष की भी शिक्षा दी जाती थी। इस विश्वविद्यालय में शिक्षा कार्य करने के लिए ना तो अधिक विद्वता की आवश्यकता थी और ना किसी अन्य चीज की, बल्कि उसमें वाद विवाद की कुशलता का होना आवश्यक था। शिक्षण में भी वाद विवाद की प्रथा प्रचलित थी। विद्यार्थी शिक्षकों के वाद विवाद को सुनते थे तथा उसमें स्वयं भी उत्साह के साथ भाग लेते थे। नदिया विश्वविद्यालय की शिक्षा नवद्वीप शांति पूर्वा गोपाल पाड़ा नामक केंद्रों में दी जाती थी। कभी कभी विद्यार्थी वहां 20 वर्ष तक अध्ययन करते थे। नदिया में छात्रों की संख्या 40,000 और शिक्षक संख्या 600 होने के भी प्रमाण मिलते थे। इस प्रकार नदिया ने भारतीय शिक्षा के विकास में बड़ा योग दिया। मध्यकाल में भी इसकी काफी योग और ख्याति रही। आधुनिक काल में भी यहाँ खेल पद्धति से प्राचीन शिक्षा दी जाती है। एक विचारक के शब्दों में सन 816 ईस्वी में यहाँ 46 स्कूल और 380 विद्यार्थी थे, किंतु 1818 में 31 स्कूल तथा विद्यार्थियों की संख्या 747 का अनुमान वार्ड ने किया। वार्ड ने जो 32 स्कूल पाए उनमें से 17 में तर्कशास्त्र और 11 में कानून तथा शेष 3 में क्रमशः ज्योतिष, काव्य और व्याकरण की शिक्षा दी जाती थी। नंबर 4 उदंतपुरी। उदंतपुरी का विश्वविद्यालय मगध राज्य में स्थित था। इसकी स्थापना मगध में पालवंशी शासकों का शासन स्थापित करने के पहले ही हो चुकी थी, लेकिन आगे चलकर इन शासकों ने विशाल पुस्तकालय बनवाया था। इस पुस्तकालय में ब्राह्मणी और बौद्ध साहित्य की बहुल्य तथा अलभ्य पुस्तकों का संग्रह था। यहाँ लगभग 1000 भिक्षु तथा विद्यार्थी निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करते थे। यहाँ धार्मिक तथा बौद्धिक दोनों प्रकार के विषयों की उच्च शिक्षा प्रदान की जाती थी। बौद्ध धर्म के प्रचार में इस विश्वविद्यालय ने विशेष योग दिया था। इतना ही नहीं, उदंतपुरी के विचार के अनुरूप ही तिब्बत का प्रथम बुद्ध मठ भी सन 1749 ईस्वी में बनवाया गया। नंबर 5 जगदल्ला। पालवंशी राजा रामपाल ने 11वीं शताब्दी में गंगा तट पर एक नई नगरी बसाई थी। तथा यहाँ पर एक विहार भी बनवाया था। यही विहार जगदल्ला के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कुछ इतिहास लेखक ने इसको जगदल्ली भी कहा है। इस समय यह विश्वविद्यालय शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र माना जाता है। यह 100 वर्षों तक शिक्षा का प्रमुख केंद्र बना रहा। जगदल्ला का विश्वविद्यालय उच्च कोटि की शिक्षा तथा अपने आदर्शों के लिए सुप्रसिद्ध था। अन्य विषयों के साथ इस विश्वविद्यालय में तर्कशास्त्र और तंत्र विद्या की भी शिक्षा प्रदान की जाती थी। तिब्बत के अनेक विद्वान विद्यार्थी यहाँ पर आकर संस्कृत के मूल ग्रंथों का तिब्बती भाषा में अनुवाद किया करते थे। यहाँ अनेक विद्वान उपाध्याय आचार्य तथा तर्कशास्त्री भी थे। इनमें विभूति चंद्र, शुभंकर, मोक्षकर आदि के नाम प्रसिद्ध हैं। सन 1203 ईस्वी में मुसलमान आक्रमणकारियों ने इसे विनष्ट कर दिया। नंबर 6 मिथिला का पुराना नाम विदेह था। यह स्थान उपनिषद काल में शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र बना रहा था। जनक यहाँ धार्मिक विषयों पर प्राय शास्त्रार्थ किया करते थे। कृष्ण काव्य के रचयिता विद्यापति का जन्म यहीं हुआ था। उन्होंने न केवल बंगाल बिहार बल्कि समस्त हिंदी प्रदेश को अपनी मधुर वाणी से मंत्र मुग्ध कर दिया था। यहाँ साहित्य की शिक्षा के साथ वैज्ञानिक विषयों के अध्ययन अध्यापन पर भी बल दिया जाता था। न्याय शास्त्र के लिए यह विश्वविद्यालय विशेष ख्याति प्राप्त कर चुका था। यहाँ के विद्वान न्याय शास्त्रियों ने न्याय शास्त्र को एक नवीन रूप प्रदान किया था, जो कि नव्य न्याय के नाम से सुप्रसिद्ध है। इसके प्रवर्तक गणेश उपाध्याय ने तत्व चिंतामणि नामक ग्रंथ का निर्माण किया था। यहाँ परीक्षा प्रणाली का भी प्रचलन था। परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए जाते थे। विद्यालय समाप्त हो जाने पर जो परीक्षा ली जाती थी उसको सलका का परीक्षा कहा जाता है। 12वीं शताब्दी से लेकर 15वीं शताब्दी तक यह शिक्षा का प्रमुख केंद्र बना रहा। नंबर 7 कांची। पल्लव राज की राजधानी कांची प्राचीन काल में दक्षिण भारत का सर्वप्रथम सांस्कृतिक केंद्र तथा शिक्षण केंद्र रहा। इसको दक्षिण की काशी कहा जाता है। यहाँ ब्राह्मणी तथा बौद्ध दोनों ही शिक्षाओं का अध्ययन अध्यापन होता था। दोनों के पृथक पृथक केंद्र भी थे। यहाँ किसी एक धर्म की शिक्षा नहीं दी जाती थी, बल्कि अन्य धर्मों की शिक्षा भी दी जाती थी। तर्कशास्त्र, न्याय शास्त्र और व्याकरण साहित्य की भी शिक्षा यहाँ प्रदान की जाती थी। अपने सुविख्यात विद्वानों के लिए कांची का भी एक प्रसिद्ध स्थान रहा। तर्कशास्त्र के सुप्रसिद्ध विद्वान वात्स्यायन, जिन्होंने न्याय भाष की रचना भी की थी, कांची के ही आचार्य कहे जाते हैं। दिंगनाथ ने भी यही शिक्षा ग्रहण की थी और 5वीं सदी के में कदम्ब वंश के मयूर वर्मा भी यहाँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए आए थे तथा तर्कशास्त्र के रचयिता सुप्रसिद्ध विद्वान कौटिल्य चाणक्य की जन्म स्थली कांची ही थी। प्रसिद्ध चीनी यात्री हेनसांग लगभग 642 ईस्वी में कांची आया था और वह काफी समय तक यहाँ रहा। कांची की विद्या संपन्नता पर उसने अपने लेखों में काफी विस्तार के साथ लिखा है। उनका कहना है कि कांची में वैष्णव, शैव, दिगंबर, जैन व महायान बौद्ध रहते थे। इस तरह प्राचीन शिक्षा के विकास में कांची का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। नंबर 8 काशी। काशी का अर्वाचीन नाम वाराणसी है। बहुत दिनों तक इस नगर को बनारस भी कहा जाता रहा, इसलिए बनारस, वाराणसी तथा काशी ये तीनों नाम एक ही स्थान और नगर के नाम हैं। यद्यपि प्रारंभिक साहित्य में काशी का उल्लेख नहीं मिलता, क्योंकि आर्य संस्कृति बहुत दिनों तक पश्चिमी प्रदेश में ही सीमित रही और इस प्रकार वैदिक उपनिषद में इसे अवश्य आर्य सभ्यता व धर्म का केंद्र माना जाने लगा तथा काशी के अनेक राजाओं ने अपने पुत्रों को तक्षशिला में शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजा था। लेकिन आगे चलकर काशी अवश्य शिक्षा केंद्र के रूप में ख्याति प्राप्त कर गया। 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में तो काशी उत्तर भारत का महत्वपूर्ण शिक्षा केंद्र था। तक्षशिला की भांति यहाँ भी वेदों के अतिरिक्त 18 शिल्पों की शिक्षा दी जाने लगी तथा उसे हिंदू धर्म का केंद्र बिंदु माना जाने लगा था। प्राचीन धार्मिक नेता पहले काशी में आए तथा यहाँ पर अपने धर्म का प्रचार भी किया। स्वयं भगवान बुद्ध ने भी अपने उपदेश का प्रचार सर्वप्रथम काशी में ही करना चाहा था। काशी के समीप लगभग 5 या 6 मील दूर सारनाथ में उन्होंने प्रथम बार अपने शिष्यों को शिक्षा प्रदान की। सम्राट अशोक के काल में सारनाथ बौद्धकालीन शिक्षा का अत्यंत प्रसिद्ध केंद्र हो गया और वह ईसा की 12वीं शताब्दी तक बौद्ध शिक्षा केंद्र के रूप में क्रियाशील भी रहा। पर दुर्भाग्यवश उसकी पद्धति का कहीं उल्लेख न मिलने के कारण अनुमानतः यही माना जाएगा कि तक्षशिला की भांति यहाँ भी वेदांगों व 18 शिल्पों की शिक्षा दी जाती रही होगी। यद्यपि सारनाथ बौद्ध शिक्षा का केंद्र होकर रहा, परंतु काशी या वाराणसी ब्राह्मणीय शिक्षा का सर्वप्रथम केंद्र था और समस्त देश में यहाँ के पंडितों की विद्वता प्रख्यात थी। यहाँ इतना ही कहना आवश्यक है कि किसी भी सार्वजनिक शिक्षण संस्था की स्थापना नहीं की गई और यहाँ के पंडितों ने व्यक्तिगत रूप से अध्यापन की प्राचीन परंपरा को अविच्छिन्न रखा, लेकिन यह भी निर्विवाद रूप से सत्य है कि उनके पांडित्य और साहित्य की धाक देश में जमी हुई थी। विद्वान दार्शनिक शंकराचार्य को काशी आकर यहाँ के पांडित्य से अपने सिद्धांतों की पुष्टि करवाना आवश्यक हो गया और ईसा की 11वीं शताब्दी में तो काशी और कश्मीर ही शिक्षा के दो प्रमुख केंद्र थे, क्योंकि मुस्लिम आतंक के कारण बहुत से विद्वान पंजाब छोड़कर उत्तर तथा पूर्व अर्थात काश्मीर और काशी चले गए।